इसका रिकैप कर नहीं पाई मैं, तो आज हम एक छोटा सा संक्षिप्त में उससे हमें क्या सीख मिली ये हम ये बताने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी ने जो हमें राधा रमन और राधा वल्लभ और बांके बिहारी जी की कथा सुनाई श्रवण कराई का हमने, उससे हमें अर्चा विग्रहों के प्रति जो हमारा आस्था है, विश्वास है और प्रेम है वो बढ़ गया। और प्रभु जी ने जो ये लाइन में बताई थी कि प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात गजेंद्र, तो इस लाइन का अर्थ हमें प्रभु जी की लीलाओं से, जो कल लीलाओं का श्रवण प्रभु जी ने कराया उससे हमें इस लाइन का मतलब समझा। और दूसरी सीख हमें प्रभु जी ने ये कथाओं के द्वारा दी कि हमें कृष्ण भावना मृत का मतलब क्या होता है। जब प्रभु जी ने बताया कि राधा रमन की हर मिठाई में कैसे हम कृष्ण को देख सकते हैं, एक जिलेबी है तो बीच में कृष्ण है और उनके इर्द गिर्द सब गोपियां हैं, और इमरती है तो वो गोपियों के घाघरे में जो डायमंड्स लगे हैं वो है, तो
उलझे हुए घाघरा है सब
उलझे हुए घाघरा, तो कैसे हम हर एक चीज में कृष्ण को देख सकते हैं ये कल लीलाओं के द्वारा। तो आज मैं श्रीमान विष्णु प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वे वृंदावन की कथा सरिता की श्रृंखला को अग्रसर करें।
हरे कृष्णा। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण
गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।
ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंदन मुकुंद मुरारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंदन मुकुंद मुरारी, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना मई की जय श्री गिरी गोवर्धन की जय 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 श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के इस पवित्र दिवस पर कार्तिक शुद्ध अष्टमी यानी गोपा अष्टमी गोष्ठ्याष्टमी गोपूजा इस पवित्र दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार। आप लोगों हमारी कथा में आए साथ साथ आज श्रीनिवास आचार्य का तिरुभाव दिन भी है, गदाधर दास का भी आज तिरुभाव दिन है। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। तो कल हमने एक कथा आज बताने के लिए कही थी, वो है राधारमण भगवान कैसे तुरंत इच्छा पूर्ण करने वाले हैं तत्क्षण। तो एक तो उनका प्रूफ यही है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको एक बार मन में केवल सोचा कि अगर वो नरसिम्ह भगवान प्रहलाद के इशारे में एक ही इशारे में खंभे से प्रकट हो सकते हैं, इतना अद्भुत अवतार कितने तत्क्षण प्रकट हो गया, एक उंगली दिखाने मात्र तुरंत वहां पर खंभे में दिखाई पड़े प्रहलाद को। विश्व को दर्शन होने के पहले प्रहलाद को खंभे के अंदर भगवान का दर्शन हुआ, यानी कितना समय लगा, एक क्षण भी लगा नहीं। तो सबसे पहले तो नरसिंह भगवान आए इसका विचार करके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने विचार किया कि क्यों ना वो हमारी गोल मटोल शालिग्राम शिला से प्रकट हो सकते हैं, क्यों ना हो सकते हैं। उसके पहले उन्होंने एक सुंदर बात कही है जब वो धनी व्यक्ति आया था ना सब अलंकार लेकर देने के लिए, तो वो बहुत देर बातें होती रही, नहीं 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 लेंगे, क्योंकि हम लोग, मैं क्या करूँगा, हमारे ठाकुर को अंग तो है नहीं। तो बाद में वो दे के ही गए उनको, तो ये सोच रहे हैं कि हमारे ठाकुर तो कड़ी पकौड़ी जैसे हैं। कैसे बताइए, खड़ी पकौड़ी कैसी होती है? हाँ, गाढ़े रंग की कड़ी होती है, उसके अंदर पकौड़ी होती है। जो पकौड़ी आप निकालते हैं ना कड़ी से, तो कैसी होती है? वो पीली दिखाई पड़ती है एकदम डूबी हुई कड़ी में। मैं विशेष करके यूपी वालों की कड़ी की बात कर रहा हूँ, गुजराती कड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पतली और सफ़ेद होती है, गुजराती वाली कड़ी नहीं बहुत बोल रहा हूँ, यूपी वाली, पंजाबी वाली, जिसमें बेसन होता है और बहुत गाढ़ी होती है वो। अच्छा, एक कहानी बता देता हूँ आपको मैं, कड़ी पकौड़ी वाली। हाँ, तो कृष्ण को हमारे ना कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए नंदगांव में उनको ना कड़ी पकौड़ी का भोग लगता है रोज, मतलब दोपहर के कच्चे भोग में उनको लगता है। अभी कच्चा भोग का मतलब भी बता देता हूँ, कच्चा भोग का मतलब जो पकवान नहीं है इसको कच्चा भोग कहते हैं। और शाम को जो लगता है भोग हर मंदिर में, श्री जी मंदिर में, नंदगांव में, वो पकवान न कहते, उसमें पूड़ी होगी, उसमें पकौड़े होंगे, उसमें हलवा होगा, उसमें खीर होगी, मतलब हैवी आइटम्स जो तल के बनाते हैं और कच्चे मतलब दाल रोटी चावल कड़ी पकौड़ी सब्जी अंगा, हाँ ये सब कच्चा प्रसाद बोलते हैं। तो एक कच्चे प्रसाद में नंदगांव में रोज कड़ी का भोग लगता है। तो एक ज़माना था, उस समय पकौड़ी नहीं हुआ करती थी, केवल कड़ी ही कड़ी लगाते थे। तो एक दिन एक मंदिर में एक व्यक्ति ने लाला को, यानी बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और कड़ी भी उसमें थी। तो जब ही वो भोग उतारने गए ना, तो अल्टर पे लाला जी दिखे ही नहीं किधर, मतलब भगवान के मंदिर से जहाँ पर लाला जी थे, लाला जी गायब वहाँ से। तो अभी क्या करें, बहुत ढूंढ रहे उनको, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो ना बहुत देर के बाद में ना वो खी वो कड़ी वाले भगोने में मिले, मतलब अभी ना आपको पता नहीं शायद, हम लोग मुंबई वाले बहुत कंजूस होते हैं, हमारे यहाँ पर छोटी छोटी कटोरी होती है, छोटी छोटी कटोरी। और गांव में जाएंगे ना आप, देहात में ऐसे बड़ी बड़ी वैसे भगोने, जैसे जैसे अभी मैं यूपी में कहीं समझो, अभी मैं मदन मंदिर के माता जी के घर पे गया ना, तो इतनी बड़ी कटोरी में वो दाल वाल देंगे, इतने इतने बड़े बड़े, मतलब हम लोग भगोना ही कहते हैं उसको, भगोना। तो भगोना क्यों दे रहे हो, कटोरी में दो तो ऐसे भगोने जैसे बड़ी बड़ी कटोरी में वो क्या बोलते हैं उसको, कड़ी कड़ी दी थी ना। तो ये अपने कड़ू कटोरी में डूबे मिले। तो फिर वो भक्त के मन में विचार आया कि देखो इतनी कड़ी पसंद है ना कि छलांग लगा दी उसके अंदर, लेकिन अगर कोई तैरने वाली वस्तु होती तो वो उसको पकड़ के तैरते ना उसके अंदर, इसलिए तैरने वाली वस्तु पकौड़ी बनाना आरंभ कर दिया कि भाई आगे कभी भी कुछ छलांग लगाई ना तो कम से कम वो तैरने वाली पकौड़ी से पकड़ के अपने आप को ऊपर रखेंगे, नहीं तो वो डूबे ही रहेंगे हमेशा। ऐसा है जैसे हम लोग तो स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग पॉन्ड में तो कैसे टायर होता है, बलून होते हैं, तो बच्चे कैसे उसको पकड़ पकड़ के चलते हैं ना, डूबते नहीं है, इसको पकड़ के चलते हैं, बांध के रखते हैं उनको। वैसे कड़ी के अंदर पकौड़ी का जन्म कैसे हुआ, इसकी ये मधुर कहानी मैंने आपको सुनाई। तो ये कहाँ से निकली थी कहानी, पकवान और कच्चे अन्न से? वो कहानी कहाँ से निकली थी? गोपाल भट्ट गोस्वामी से। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने गोल मटोल शालिग्राम शिला को कड़ी पकौड़ी का उपमा दिया था कि हमारे ठाकुर तो कड़ू पकौड़ी जैसे हैं। एनीवेज, तो ये एक प्रमाण हो गया कि उन्होंने इच्छा की और साक्षात नरसिंह चतुर्दशी के रात को ही वो दामोदर नाम के शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, बिल्कुल सुंदर 12 अंगुली मात्र के उनके शरीर का दिव्य अंग, हर एक अंग जो इतने महीन तरीके से उनका निर्माण हुआ था। ये दूसरा प्रूफ है कि वो उनका उगम ही चमत्कारी तरीके से हुआ है, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्क्षण उन्होंने प्रतिसाद दिया। अब ये कथा जो है, अभी आज भी लोग कहते हैं कि कुछ भी आपकी इच्छा होगी ना, तो तीव्र इच्छा तो राधा रमन से जाके आप मांगना। तो हमारे गुरुदेव उस समय तो अभी तक इस्कॉन में नहीं आए थे, ढूंढ रहे थे वृंदावन में। तो उस समय पूरे वृंदावन में दो ही फॉरेनर थे, एक असीम कृष्णा दास और एक रिचर्ड स्लाविन। हाँ पूरा वृंदावन उनको पहचानता था, क्योंकि दो ही विदेशी थे। तो उसमें क्या हुआ, वो असीम कृष्ण तो ऐसे थे कि उनका 6 महीना हम्पी का वीजा रिसर्च के लिए, हाँ एकदम बोनाफाइड, और 6 महीने वृंदावन में निवास, और रिसर्च के नाम पे कुछ ना कुछ पेपर भेजते रहने का तो वीज़ा कंटिन्यू रहेगा ऐसा, तो वो तो एकदम अच्छी तरह से वृंदावन निवास कर रहे थे। लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं वो तो पहली बार ही आए थे ना विजिट वीजा पे, तो वो वृंदावन में ऐसे ही, पता है ना आपको कि वो अमृतसर ट्रेन जा रही थी, तो उसमें वो हवा खाने के लिए नीचे उतरे थे भीड़ में से, और हवा खाने के लिए उतरे तो वापस चढ़ ही नहीं पाए, और वो मथुरा स्टेशन था, तो ऐसे ही मतलब अनजान स्टेशन पे उतर गए, और पता नहीं क्या बैग वैग रह गया गाड़ी में, अंदर रह गया। तो आप लोग एडमिट नहीं कर रहे हो इधर उधर? हाँ, तो उन्होंने पूछा कौन सी जगह है ये, बोलते ये मथुरा है, ये मथुरा क्या होता है, बोले कृष्ण का जन्म स्थान है और आज जन्माष्टमी है, बोलते तो जन्माष्टमी के दिन भगवान की कैसी योजना है देखो, हाँ कोई प्लानिंग नहीं हमारा कि, और पता ही नहीं जन्माष्टमी क्या होती है, तो जन्माष्टमी में पहुंचने का प्लान कैसा कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर तो जानते हैं ना कि जन्माष्टमी है, ठाकुर जी को सब पता है कि मेरे जन्मदिन पे मेरे भक्त को यहाँ बुलाना है। एनीवे लंबी कहानी है बहुत। तो फिर वो ऐसे, मैंने क्यों बताया जन्माष्टमी का किस्सा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन उनको साधुओं ने हाथ पकड़ कर चल कर वृंदावन ले गए, और महाराज ने लिखा है अपनी किताब में कि उसी दिन मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि ये कृष्ण की जगह है, और कृष्ण के उपस्थिति का भी अनुभव बहुत तीव्रता से हुआ। ऐसे महाराज अपने किताब में लिखते हैं कि द एटमॉस्फियर वाज सो सरचार्ज्ड दैट द पिक्चर व्हिच आई हैड सीन इन हिमालयस इन दिल्ली दैट पर्सनालिटी आई कुड फील हिज प्रेजेंस इन वृंदावन धाम। तो ऐसे भाव में ना वही रह गए, और बेचारे हमारे दूसरे थे ना, वो क्या नाम था, गैरी, वो बेचारे वहीं अटक गए, क्योंकि इनको बुखार आया, फिर वो रामकृष्ण मिशन में गए और वहीं पर उनका सब मीटिंग का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया, फिर वो उधर ही रह गए और वहीं बस गए, वहीं आसक्त हो गए, वहीं मन लग गया, वहीं मग्न हो गए, सब कुछ हो गया, और इसमें क्या गड़बड़ हो गया, ये वीज़ा भी ख़त्म होने वाला चीज़ है ये भूल गए। और कैसे पता चला उनको, क्योंकि रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट होता ना गवर्नमेंट में कि ऐसा ऐसा फलाना व्यक्ति वृंदावन में है, उसका रिकॉर्ड था, तो उधर मथुरा के चौकी पर, मतलब वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर के पास जो पुलिस चौकी है, सरकारी अस्पताल भी वहाँ पर ही आज भी है, और खबर आई थी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है उसका वीज़ा समाप्त हो गया है, तो पुलिस लोग ढूंढने लगे उनको। अभी सब जगह भाग रहे हैं, जो जो मिल रहे बता रहे हैं, आपके पीछे पुलिस लग रही है, आपको ढूंढ रहे हैं, अभी क्या करें, भाग रहे हैं। अभी उन्होंने ना बहुत सख्त गश्त देना शुरू कर दिया इसको ढूंढने के लिए, तो बात बहुत गंभीर हो गई, द सिचुएशन बिकेम वेरी सीरियस, कि अभी अगर पकड़े जाएंगे ना तो इतना वीज़ा ओवरड्यू हो गया है कि अभी ब्लैक लिस्ट करके परमानेंटली इंडिया से बाहर कर देंगे, कभी इंडिया आने का वीज़ा नहीं देंगे, डिफॉल्टर, हाँ अपराधी के रूप में, अभी क्या करें, स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तो रोज तो चीरघाट के पास सोते थे ना, वहाँ स्नान करके मंगला करते थे राधा रमण की, ऐसे ही फिर एक दिन उठे और मंगला में गए और राधा रमण के सामने ऐसा गिड़गिड़ाए, ऐसे प्रार्थना किया तीव्रता से, महाराज अभी आप ही बचा सकते हो, कोई और तरीका नहीं है, मैं अगर ऑफिशियली प्रस्तुत हो गया ना अपने आप, तो वो इतना वीज़ा एक्सपायर देख के ना स्टैम्प मार देंगे, इसको कभी लेना नहीं इंडिया में, तो मैं अभी ऑफिशियली गया ना तो कोई खैर नहीं है, और मुझे इंडिया नहीं छोड़ना है, मैं वृंदावन के बहुत प्रेम में हूँ, मुझे वृंदावन नहीं छोड़ के रह सकता मैं, ऐसे ना हृदय से प्रार्थना किया। और आप, मैंने बताया ना आपको कि बहुत अंधेरा हुआ करता था उस समय, कोई लाइट वाइट थी नहीं, तो वो 5 बजे मंगलवार में प्रार्थना किया राधा रमन जी को, और आ गए बाहर, और हमेशा की तरह राधा वल्लभ जी मंदिर जाने के लिए निकल गए, और जैसे ही वो कैसा है ना, राधा रमन जी मंदिर है, उसके हमने एक कुआं है, उसके आगे एक राइट टर्न है, राइट टर्न लेंगे ऐसे आ जाएंगे तो एक लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न आएगा तो गली 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 करके आप राधा दामोदर के मंदिर के बाहर निकलोगे, और दामोदर के मंदिर के आगे जाओगे तो राइट टर्न लोगे तो आपके सामने सेवा कुंज लेफ्ट में आएगा। तो ऐसे करते करते आए, वैसे काफ़ी 2 किलोमीटर का अंतर, लेकिन रात के अंधेरे में बहुत समय लगता है उसको, तो धीरे धीरे करते आए, और जैसे ही सेवा कुंज के गली के सामने आए, ये राइट साइड में भक्ति वैभव पुरी महाराज का आश्रम, लेफ्ट साइड में सेवा कुंज का एंट्रेंस, और पिच डार्क है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, खाली वो आपको पता है, अंदाज है, रोज का आदत है, इसलिए आप जा रहे हैं। अचानक ना उनके पैर के काफ में, मतलब हमारे मराठी में कहते हैं पोटरी में, वो होता ना मांसल भाग होता ना लेग में, उधर ना कोई शार्प टीथ दंत किसी के ऐसे घुस गए और आओ ऐसा आवाज आया उसके बाद में। तो अंदाज था कि कुत्ता काटा होगा, ऐसा नहीं कि कुत्ता देखा, देखा तो कुछ नहीं, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं आया, खाली वो आओ ऐसा आवाज आया और पैर में कुछ शार्प चीज घुस गई जिससे लगा कि दांत घुस गए किसी के, और इतना दर्द हुआ है उधर, इतना दर्द हुआ, लेकिन क्या करें, अभी सब जगह अंधेरा ही, आगे भी अंधेरा पीछे भी अंधेरा, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो चलते रहना है। तो ऐसे ही चलते 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 करीब 6 बजे के पहले कुछ राधा वल्लभ जी मंदिर में गए, तो वहां पर लाइट था, पहला लाइट मिला वहां पर, हाँ अठखंबा के यहाँ से वो एंट्री ना, वहां से लाइट मिला उनको, वहां से गए तो फिर अंदर चले गए। मंगलाश्वर शुरू हो ही रही थी तो हमारे राधेश लाल जी महाराज, उनके मित्र है ना, वो देखते हैं तो क्या है, उनके पैर में तो खून की धार लग रही है जिसे मंदिर के एंट्रेंस से दिखाई पड़ रही है, और जहां तक पहुंचे वहां से खून की धार चल रही है। इसका मतलब क्या है, जहां कटा गया था ना, कट गया था, वहां से लेकर खून की धार चल रही है, और ये चल रही है। तो राजेश लाल जी पूछते हैं, अरे मतलब अपनी हिंदी भाषा में, उनको क्या पता इंग्लिश, लेकिन समा उन्होंने कन्वे किया कि ये तो कुत्ता काटा है आपको, ये तो बहुत पागल कुत्ता भी हो सकता है, आपने देखा नहीं तो आपको अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है पागल कुत्ता हो, तो फिर आपको वो पागल हो जाएंगे आप, रेबीज हो जाएगा आपको, कुत्ते का होता है रोग रेबीज। अरे उस समय हमारे बचपन में, इसे मेरे बचपन का ही काल है 1971, तो उस समय पर ना कुत्ता काटना मतलब कुत्ता काटा चलेगा, लेकिन कुत्ता काटने के बाद जो होता है ना वो बहुत भयंकर होता था। कुत्ता काटने के बाद में पेट की चमड़ी को पकड़ के 14 इंजेक्शन दिया करते थे हर रोज एक, और वो सबसे भयंकर माना जाता था। कुत्ता को कोई डरता नहीं था, लेकिन कुत्ता काटा तो उसके बाद जो होता है वो भयंकर हुआ करता था। तो अभी राधेश लाल जी ने कहा कि आपको अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते का जो रेबीज का जो है ना इंजेक्शन, वो प्राइवेट में नहीं मिलता है किधर, वो तो गवर्नमेंट में मिलता है। आज भी वो स्थिति है, रेबीज का जो इंजेक्शन है वो गवर्नमेंट में ही मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी वो गवर्नमेंट में ही मिलती है। तो गवर्नमेंट का अस्पताल कहाँ है, वो तो रंगनाथ जी के पास में है, पुलिस चौकी के बाजू में है। वहां पर अगर जाएंगे कुत्ता का सुई लगाने के लिए तो पुलिस चौकी तो बाजू में ही है, वहां पकड़े जाएंगे आप। लेकिन पकड़े जाना अच्छा है मरने से, ऐसा बहुत डिस्कशन हो गया कि अभी तो वीजा खत्म हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर ये निर्णय हुआ कि जाना है। तो जाकर पुलिस गवर्नमेंट के अस्पताल में डॉक्टर के सामने प्रस्तुत हो गए। डॉक्टर ने कहा कि देखो 14 इंजेक्शन नहीं लोगे ना तो मर जाओगे, तो लेना ही पड़ेगा और यहीं आके लेना पड़ेगा। और तब तक पुलिस आ गई वहां पर और पुलिस ने भी उनको पकड़ लिया। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा कि देखो कुत्ता काटा है तो 14 तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो इतना दिन का तो मुझे एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा। मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि 14 दिन तो उनका वीजा वैलिड अभी मैं कर दूंगा, लेकिन पीछे का जो इनवैलिड है वो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन 14 दिन का वैलिड कर दूंगा। तो ये ना रोज जाकर इंजेक्शन लगाने लगे। जब 14 इंजेक्शन समाप्त हो गए ना तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। बीच में एक बार भाग भी गए थे, लंबी कहानी है बहुत महाराज ने हमको खुद बताई थी, कैसे एसटी में उनको पकड़ के ले जा रहे थे और वे सामने बैठे थे, पुलिस आराम से पीछे बैठे थे, ड्राइवर बाजू में था, तो उन्हें ड्राइवर का दिल ऐसा कुछ बहला कर झट से उतर गए वो, हाँ लघु शंका करने के बहाने, और वहां से भाग गए थे। उसके बाद में ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया था, एक बार पकड़ने के बाद जब भाग गए थे ना तो वो एकदम सीरियस मामला हो गया था। और उसके बाद में प्रार्थना किया, उसके बाद में कुत्ता काटा, उसके बाद में इंजेक्शन लगा रहे। अभी ये बहुत गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं नहीं माफी चाहता हूँ, मुझे भारत का बहुत प्रेम है, मुझे रहना है। तो उन्होंने कहा कि अगर वीजा आपका इतना एक्सटेंड हो गया तो आप तो उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते। तो फिर वो मथुरा में गए, मतलब रिजेक्ट, इतना लेट हो गया है, रिजेक्ट है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो यूपी के गृह मंत्रालय में गए, उधर भी रिजेक्ट किया गया उनका। वो कैसे ना, अभी बहुत लंबी कहानी है, एक एक अधिकारी करते करते ऊपर के अधिकारी तक गए और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय तक गए, वहां पर रिजेक्ट किया गया। अभी कहा कि आपको केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय में जाना पड़ेगा। तो वहां से पहले सचिव को मिले रिजेक्ट, उसके बाद ऊपर के अधिकारी को मिले रिजेक्ट, ऐसे आईएएस अधिकारी को मिले रिजेक्ट, उसके बाद में फिर सीधे ना करते 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 केंद्रीय गृह मंत्री के ऑफिस में पहुंच गए। इतनी जिद थी इनके अंदर, इतनी चिकाटी थी। अभी भी हमको पता नहीं चल रहा कि उस समय गृह मंत्री कौन था लेकिन वो गृह मंत्री के टेबल पे गया और ये खड़े उनके सामने दीन चेहरा करके, और गृह मंत्री ने कहा नहीं हो सकता ही। अभी केंद्रीय गृह मंत्री ना, लास्ट अथॉरिटी, आपका वीजा वीजा कुछ करना है तो लास्ट अथॉरिटी है, उसने मना कर दिया। तो उनके सामने इतना दीन चेहरा करके खड़े हो गए। तो वो ना गृह मंत्री इनको देखता रहा उनकी आंखों में, ये उनकी आंखों में देखते रहे। पता नहीं उन्होंने क्या संदेश दिया उनको अपने आंखों से, तो ना करुण भाव में संदेश दिया, पता नहीं क्या लगा उसको, उसने एक स्टैंप लिया और मार दिया उसके ऊपर। और जब से वीजा समाप्त हो गया था तब से आज तक का जो समय है ना वो उसको रेगुलराइज कर दिया उन्होंने, बोले दोबारा मत करना, हाँ अभी तुरंत चले जाओ अपने देश में। तो तभी वो तुरंत बॉम्बे गए और वहां से फिर वो अमेरिका चले गए। और अगर वो गृह मंत्री ने उस समय स्टैंप नहीं मारा होता तो आज तक कभी वो वापस नहीं आ सकते थे। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो दिन 5 बजे उन्होंने मंगला में राधा रमन से प्रार्थना किया था। यही वो कहानी है चमत्कारिक राधा रमन की। हाँ, सबकी जड़ जो है ना वो राधा रमन की प्रार्थना थी। क्योंकि राधा रमन की प्रार्थना कब की थी? जब ही एसटी में से पुलिस के चंगुल से भाग गए थे ना, तभी मामला बहुत गंभीर हो गया था, तभी जाकर एकदम तड़प तड़प के प्रार्थना की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज अगर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भारत में है तो कोई इसमें एग्जैगरेशन नहीं है कि वो राधा रमन की कृपा से ही है। राधा रमन ने प्रार्थना की, उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया होता, ये चमत्कार नहीं किया होता, तो आज वो भारत में नहीं हो सकते थे। ये कहानी है। अभी मैं आपको दूसरी एक अद्भुत कहानी बताता हूँ राधा रमन जी की। राधा रमन जी, देखो भाई समय तो देखते हैं अभी कैसा है, समय का देख लेंगे क्या करना है तो कथा ऐसी है कि हम लोग ना श्रीरंगम की यात्रा में गए थे, और मेरे पास छोटी मेरी बेटी है, उसको थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए। तो मैंने वो गोस्वामी जी को कहा था उधर के, वो श्रीरंगम के वेंकट भट्ट के 16वें डिसेंडेंट है। हाँ, तो उन्होंने सब लोगों को व्यवस्था कर दिया। फिर वो मैं वहाँ रुका था बाहर उनके, अंधेरा हो चुका था, बेटी भी व्हील चेयर पर थी। तो हमने कहा कि हमारे रूम का व्यवस्था, हाँ आइए ना, आपकी घर की आपकी व्यवस्था तो मेरे घर पर ही की है मैंने। मतलब क्या बात कर रहे हैं, आपके घर पर प्रमुख गोस्वामी है वो रघुनाथ जी के? तो मैं खुश हो गया, लेकिन मैं थोड़ा नाराज भी हो गया बाद में, क्योंकि पहले माले पे उनका घर पे ना एक मंजिल भी थी और पहले माले पे मेरे रहने की व्यवस्था की थी। मैंने कहा मैं मेरी बेटी को लेके ऊपर चढ़ नहीं सकता, ये रोज व्हील चेयर चढ़ाना उतारना ये इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे अपने घर पर रहने की व्यवस्था की घर जैसे, लेकिन मैं नहीं इसको स्वीकार कर सकता क्योंकि बहुत कष्ट होगा इसके अंदर। कोई ग्राउंड फ्लोर में जगह है क्या कोई ग्राउंड फ्लोर में? तो हाँ, हमारा एक 4 कमरा छोड़कर आगे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एक बड़ा कमरा है, वहाँ पे आप देखिए। तो मैं बीवी को पीछे रखे आगे चला गया, और तो बड़ा वाड़ा था पूरा, वाड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, बड़ा विशाल घर था। ग्राउंड फ्लोर पे सामने एक कमरा था, पीछे एक बरामदा था, एक बड़ा हॉल था, फिर उसके आगे लेफ्ट में मेरी जगह थी, उसके आगे राइट में गौशाला घर के अंदर थी, उसके आगे बाथरूम था, उसके आगे स्नान करने की जगह था, सब पूरा विशाल अरेंजमेंट था, पूरा बिग बिग मैंशन यू नो। और फिर मैं खुश हो गया, तुरंत मैं बीवी को लेके बच्चे को जाके सेटल कर दिया, बोले एक कमरे में रहो आप। उतने में कोई बोले अरे ये तो गोपाल भट्ट जी का घर है, ये तो वेंकट भट्ट का घर है, ऐसे मुझे कोई कान में पड़ा। तो मैं सामान रखा और वापस भागा गोस्वामी के घर पे। मैं महाराज जी लोग तो बोल रहे हैं कि ये वेंकट भट्ट जी का घर है, बोला हाँ वेंकट भट्ट जी का घर है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बोल दिया। और कहते हैं कि वो जो रूम है ना आपको मैंने दिया रहने के लिए, उसमें तुम्हारे गुरु महाराज ने भी एकांत भजन किया है, उसमें हमारे मंदिर के गोसाइयों ने भी एकांत भजन किया है, बहुत पवित्र जगह है वो। और कहते हैं कि उसी में चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में 4 महीना रात भर रुके थे, और वेंकट भट्ट और गोपाल भट्ट और प्रबोधानंद जी सरस्वती को रोज रात को कहानी सुनाई थी 4 महीने 120 दिन तक। वही तो हॉल है वो, उसके हॉल के आगे जो मंदिर है ना वही तो मंदिर है, उसमें वो बैठ कर रात भर चर्चा करते थे। मेरा दंग रह गया एकदम, बाप रे, मैं तो कैजुअली कमरा मांगा था तो मुझे क्या सोने पे सुहागा, अंधा मांगता एक आंख दे भगवान दो ने 1000 आंख देते, ऐसा ही कुछ अनुभव हो गया मुझे। और मैं 4-5 दिन वहां पर रहा, और अगले दिन उठा ना, आराम से उठा, तो क्या है, मैं टौतौलिया में बाथरूम जा रहा हूँ तो पव यात्री लोग आ रहे हैं उसके अंदर दर्शन करने के लिए, बोलो बाप रे। तो अगले दिन से मैं 4 बजे उठने लगा और मैं उधर का पंडा बन गया, हाँ सबको दर्शन कराने के लिए, अंदर क्या क्या है, गौशाला है, ये है, यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक थी, यहाँ पर मंदिर है महाप्रभु जी का, यहाँ पर कस्तूरी रंगनाथ का विग्रह है, वगैरह वगैरह सब, मैं पुरोहित बन गया वहाँ का, तीर्थ पुरोहित। तो उसमें क्या हुआ, अभी कहानियाँ बताता हूँ उसमें क्या हुआ। तो वो जो मुरली भट्टार नाम के गोस्वामी है ना वहाँ के रंगनाथ जी के, वो वेंकट भट्ट के 16 डिसेंडेंट हैं। और तो फिर वहाँ पर वो आए और उस यात्रा में नंदगांव के रमेश चंद्र गोस्वामी भी थे हमारे साथ। तो फिर चौथे दिन रमेश चंद्र गोस्वामी भी दर्शन करने आए, और योगायोग ऐसा था कि जब रमेश चंद्र जी वहाँ पर दर्शन करने आए उस समय मुरली भट्टार भी दर्शन करने आए, ऐसे ही मुझे मिलने आए, तो मैं भी उनको मिला और गोस्वामी जी मिले नंदगांव के और खुद भी है, तो उनके अंदर वार्तालाप शुरू हुआ। देखो संतों के संग में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बम्बई में शेयर का भाव क्या चल रहा है, आपके यहाँ पर दूधी कैसा भाव है, ऐसा बात नहीं करते। संत लोग आते तो भगवान की चर्चा करते। तो इन्होंने बताया कि अरे ये हमारे रंगनाथ जी है ना, बहुत अद्भुत चमत्कारी है। अच्छा कैसे? तो एक नाथ ना एक दिन रंगनाथ जी एक दिन हमारे रामानुजाचार्य है ना, वो एक बड़े पतले और दुर्बल ब्राह्मण को मिले और बोले क्या हुआ, इतना दुर्बल क्यों हो, इतना कांप क्यों रहे हो? बोले भोजन वगैरह मिलता नहीं है। अच्छा मैं आपके दाना पानी की व्यवस्था करता हूँ, ऐसे कहा कि आप भी घर पे भिजवाता हूँ आपके, और वो बोला उन्होंने, और बाद में इतने व्यस्त हो गए अगले दिन बाहर गांव चले गए प्रचार के लिए और उसको दाना पानी देना भूल गए। और 3 महीने के बाद लौट के आए तो ब्राह्मण बड़ा हष्टपुष्ट हो गया था, तो उसको देखते ही उनको याद आया, अरे मैं तो उसको वादा किया था, मैं तो दिया ही नहीं उसको कान, और क्षमा मांगने लगे उससे कि माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको धान ने तो दिया नहीं, मैंने वादा किया था, वचन दिया था आपको, मैंने पालन नहीं किया, आप क्षमा करना मुझे। तो ब्राह्मण चरणों में गिर गया, बोलते क्यों महाराज जी शर्मिंदा करते हो, आपने तो अगले दिन सुबह आके दे दिया, तो कितने बजे दिया, फलाना टाइम को आके दिया, अरे उसके पहले ही भोर में मैं चला गया था। तभी रामानुजाचार्य को ये समझ में आया कि रंगनाथ जी स्वयं रामानुजाचार्य बनकर आए और वो ब्राह्मण को नियमित रूप से दाना पानी जो है पहुंचाने लगे, पहुंचाते रहे, इसलिए वो ब्राह्मण खा पी के भ्रष्ट दष्ट पुष्ट हो गया था। अब ये कहानी किसने बताई, मुरली भट्टार जो रंगनाथ जी के पुजारी हैं पुरोहित हैं, उन्होंने हमारे रमेश चंद्र गोस्वामी को बताई। तो हमारे रमेश चंद्र गोस्वामी कैसे हैं, वो तो पूरे भंडार है, भंडार कथाओं के भंडार है। आपके पास समय है तो चिरंतन काल तक आपको वो अनंत कथाएं बता सकते हैं, खाली आपके पास समय होना चाहिए बस। तो उन्होंने अपने कहते ना बैग में से कहानी निकाली, बोले हमारे पास भी कहानी है। हाँ आप तो आपके यहाँ से गोपाल भट्ट जी गए थे ना, तो गोपाल भट्ट जी अभी हमारे हो गए, वो तो नंदगांव में बहुत निवास किया उन्होंने, हमारे वो खास हमको हमारा प्रेम है गोपाल भट्ट गोस्वामी पर। तो हमारे गोपाल भट्ट की के लिए भी राधा रमन ने चमत्कार किया था। बोले कैसे चमत्कार किया था? तो बोले जैसे शालिग्राम शिला से दामोदर शिला से जब भी राधा रमन जी प्रकट हुए ना, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने भाव विभोर हो गए थे कि ठाकुर जी कितने दयालु हैं, ऐसा जरा सी इच्छा क्या कि अगले दिन पूरी कर दी, इनका बड़ा महोत्सव होना चाहिए, बड़ा उत्सव होना चाहिए। तो पूरा प्लानिंग किया कि शोभा यात्रा होगी, फिर अभिषेक करेंगे, फिर महाभोग लगाएंगे, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा बजट बन गया। और ये तो फकीर आदमी थे, एक रुपये में जेब में एक रुपया भी नहीं है उनके, तो ना बाजार गए, गोपीनाथ बाजार उनके पीछे है ना वो गोपीनाथ बाजार, वहाँ गए और दुकानदारों से पैसा लिया और बोले कि मैं कर्जा ले रहा हूँ और वो 15 दिन में मैं ये सब चुका दूंगा, कृपा करके वो उत्सव मनाने दीजिए। सबको भी खुशी हुई, उनको कर्जा दिया गया, 15 दिन का समय मांगा उन्होंने। और वो कथा ऐसी है कि बहुत लंबी कथा है वो, लेकिन बताना जरूरी है कि वो शोभा यात्रा में ना, अभी ये तो गुणमंजरी के अवतार हैं, कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी के अवतार है। अभी गुणमंजरी तो गोपी हैं, उनके बहुत गोपियाँ, उनकी सहायक गोपियाँ हैं ना गोलोक में, तो वो सारी गोपियाँ तो स्त्री रूप में आई थी, लड़कियों के रूप में उस समय उन्होंने अवतार लिया था जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पुरुष अवतार में वहाँ पर लीला कर रहे थे। तो वो गोपियाँ जवान थी और ये गोपाल भट्ट भी जवान थे लेकिन पुरुष शरीर में थे, तो उनके माता पिता उनको छोड़ते नहीं थे उनके साथ संग करने के लिए, इनका तो दिव्य संबंध है लेकिन उनको लगा कि स्त्री और पुरुष का संबंध है, इसलिए माता पिता जैसे गोपियों को रोकते थे कृष्ण को मिलने के लिए, वैसे इनको मिलने के लिए भी अपने बेटियों को रोकते थे। फिर भी कहते हैं कि बहुत सारी गोपियां छुप छुप के इनकी शोभा यात्रा में आई और बहुत सारी गोपियों को मतलब कन्याओं को घर में बंद करके रखा गया। ऐसे लीला उस समय होती थी। जब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी नंदगांव में निवास करते थे ना, तो वहां पर भी गोपियां आती थी उनको मिलने के लिए, संग करने के लिए। वहां पर भी लोग उनको रोकते थे, पिताजी माताजी बड़े भाई। तो कैसे भी करके ये शोभा यात्रा वृंदावन के गलियों में संपन्न हो गई। अभिषेक हुआ राधा रमन जी का, आविर्भाव का, प्रतिष्ठापना, मतलब तो जरूरत नहीं करने की, अभिषेक हुआ, फिर 56 भोग लगाया, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। बड़ी धूमधाम से राधा रमन जी का आविर्भाव महोत्सव उसी दिन संपन्न हुआ। और उसके बाद में फिर सोच रहे थे कि पैसा आएगा, लेकिन 15 दिन हुए, एक भी पैसा नहीं आया। 14वें दिन रात को इनको नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि अभी क्या करें, क्योंकि संत है ना, वो दिया हुआ वचन तो पूरा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो चीटिंग करने वाले। तो 14वीं रात को तड़पते रहे, तगमग, मराठी में कहते हैं ना तगमग, बहुत दिल अस्वस्थ रहा। और सुबह ही उठ के भरी भोर के समय पर, वो भी दुकान खुलने का समय था, तभी गए और व्यापारियों को बोल रहे हैं, महाराज जी माफ़ करना, कोई धन संपत्ति तो आई नहीं 15 दिन में, और मैंने तो वादा किया था आपको 15 दिन के बाद दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ और दिन की सहूलियत चाहता हूँ, कुछ और मुझे दिन दे दीजिए। तो दुकानदार चरणों में गिर गया, अरे महाराज जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, कल ही तो आप आए थे और आपका पूरा हमारा पैसा चुकता करके चले गए। तो वो आश्चर्य हो गया उनको, ऐसे क्या बात कर रहे हैं, क्या वो पैसा लेना ही चाहते, शायद वो शायद सेवा करना चाहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। दूसरे दुकान में गए जहाँ से पैसा लिया था, उसको बोल रहे क्षमा करना, हम पैसा नहीं दे पाए आपका, 2-3 दिन का और समय दे दो। वो भी चरणों में गिर गया, ऐसे सभी एक के बाद चरणों में गिर गए। सभी लोग यही कह रहे हैं, अरे आपने आज की बात करो, आप कल ही आके पैसा दे के गए थे। तब जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में प्रकाश हुआ, अरे ये तो राधा रमन जी स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी बनकर मेरा रूप लेकर सबका पैसा चुकता करके आए। इतना गदगद हो गए गोपाल भट्ट जी। तो ऐसे ये गोपाल भट्ट जी के जीवन में भी राधा रमन जी स्वयं गोपाल भट्ट बने। और ये कथा किसने बताई, व्यंकट भट्ट के घर में रमेश चंद्र गोस्वामी ने हमारे सामने बताई, है ना। तो साधु संघ इसको कहते हैं, हर एक चीज के लिए साधुओं की अपनी अपनी कथा होती है, सपोर्टिंग स्टोरी। तो राधा रमन जी कैसे दयालु हैं, इसका ये प्रभाव, इसका ये प्रूफ है। एनीवेज, अभी हम आज गोपाष्टमी है, आप सब लोगों को गोपाष्टमी की हार्दिक बधाई हो। गोपाष्टमी थोड़े समय को नहीं कथा करनी चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर दिवस है ना आज का। वो गोपाष्टमी का उत्सव वो नंदगांव में इतना फेमस है ना, इतना मतलब प्रिय उत्सव है ये, कि नंदगांव के गोसाई लोग गोपाष्टमी के दिन जहाँ कहीं भी रहेंगे ना, लेकिन दौड़ के नंदगांव में आ जाएंगे, ऐसा उनका नियम है। और रह नहीं सकते, कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं विदेश में, तो भी गोपाष्टमी के दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी मैसेज आया मुझे कल, सवेरे 10 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा और शाम को 7 बजे तक चलेगा। मतलब क्या, मैंने मेरी पत्नी को समझाया, 10 बजे ठाकुर जी निकलेंगे गौचारण करने के लिए और शाम को 7 बजे लौट के आएंगे, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जहाँ जहाँ गाये जाएंगी और दो दो लड़का कृष्ण बलराम बनेंगे, उनको सजाएंगे ठाकुर जी बना के, और उनको दो व्यक्ति कंधे पे लेकर चलेंगे और ये मुरली बजाते बजाते गौचारण करके जंगल में जाएंगे, वहाँ गीत गाते रहेंगे और दिरा दिन घूमते रहेंगे, लोग उनको खिलाते पिलाते रहेंगे, उनको खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, गाय का पूजन करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, गीत गाएंगे। उनका हर समय का गीत है, जाने के समय का एक गीत है, बीच जंगल का एक गीत है, वहाँ बैठ के भोजन खाने का एक गीत है, फिर गाय को थपथपाने का एक गीत है, फिर गाय को लेके आने का दीप है, फिर वो टेर कदम पे आएंगे, टेर कदम पे सब इकट्ठा करेंगे और ठाकुर जी को वो डाली पे चढ़ाएंगे, उधर बैठ के मुरली बजाएंगे और मुरली बजा के फिर गौओं को बुलाएंगे। हाँ, कदम्ब चढ़ कान बजावत गैया, कदम्ब चढ़ कान बुलावत गैया। बहुत सुंदर गीत गाएंगे, फिर सब गैया इकट्ठा होंगी, फिर गैयाओं सब गाय के ऊपर वो लाल लाल लगा के हाथ के चिन्ह बनाएंगे, बहुत आनंद है उसके अंदर, बहुत आनंद। और फिर शाम को जब लौट के आएंगे टेर कदम से, तो फिर नंद बैठक पे वहाँ पर बाबा और बैठे रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, आरती उतारेंगे, फिर वो गैयाओं को लेकर गैया अपने घर जाएगी और काना बलुआ घर जाएंगे, उनको भी बहुत सत्कार होगा, उनका लोग पैर छूने आएंगे, वो दर्शन देने बैठेंगे, सब लोग उनके चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे गोपाष्टमी का। इस तरह से पूरा दिन का सब उत्सव संपन्न होगा। कभी आप जाइए, हाँ आइए वृंदावन में, नंदगांव में गोपाष्टमी के दिन। आनंद क्या होता है जीवन में उसका आपको परिचय होगा। हाँ हमारे शहर में क्या है, कुछ है नहीं, माता फोड़ी है पर कुछ नहीं है। आनंद क्या चीज है और मनुष्य जीवन का आनंद क्या होना चाहिए उसका आपको अनुभव मिलेगा नंदगांव में, वृंदावन में, हाँ होली में, रंग भरनी होली, लट्ठा मार होली, लड्डू मार होली, छड़ी मार होली, क्या क्या बताएं आपको। एनीवेज तो गोपाष्टमी के दिन की कथा ऐसी है कि देखो, एक साल के उम्र में भगवान वापस आए ऐसा हमने पढ़ा है। कहाँ से? गोकुल से नंदगांव आए, और तब से उनको ना बछड़ों का बच्चियों का चालन पालन करने के लिए दिया गया, मतलब वो वत्सपाल बन गए। गोपाल तो आज के दिन बने 5 साल होने के बाद, लेकिन तब से वत्सपाल थे, बच्चिया बच्चियों को घुमाते थे और पास पास में घुमाते थे। तो अभी बहुत साल हो गए ना बड़े, कृष्ण भगवान बड़े भी हो रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान है ना 1.5 times उनकी वृद्धि होती थी, मतलब किसी व्यक्ति का सेम टाइम जन्म हो गया है तो उसके 1 साल पूरे हो गए, तो इनका समय भी 1 साल पूरा हो गया लेकिन शरीर की वृद्धि 1.5 साल की हो गई। 2 साल हो गए तो बाकी लोगों के शरीर की वृद्धि 2 साल की और इनकी 3 साल की, 1.5 गुना। तो हमारे भक्ति रसामृत महाराज जिसका वो है ना गोपाल चंपू जीव गोस्वामी का, उसमें से वर्णन दिया है, उसमें से वर्णन करते थे हमेशा। तो जब ये 3.5 साल के हुए ना तो 5 साल के जैसे हो गए। तो एक जगह लिखा है कि जब 5 साल पूरे हुए तो उनको बड़े गाय का जिम्मेदारी दिया गया, और एक जगह लिखा है 3.5 साल में ही 5 साल मानकर उनको गायों का भार दे दिया गया। एनीवेज वो तो लीला का अचिंत भेदाभेद तत्व है। लेकिन हुआ ये कि जब कृष्ण बड़े बड़े होने लगे ना तो ग्वाल बाल उनको चिढ़ाने लगे, अरे लाला तोपे तो बाबा को विश्वास ही है ना है, इसलिए तो को अभी तक छोटी छोटी गैया दे के रखे हैं, नहीं तो बड़ी बड़ी गैया देते ना, अगर तुम पे विश्वास होता तो दे देते, लेकिन तुम तो छोटा ही रह गया, बाबा को तो विश्वास है ना है तोपे। अच्छा तो वो थोड़ा बुरा लगता ना, अभी कभी ऐसा कोई कहेंगे तो बुरा लगेगा ना। ठीक है एक बार सुन लिया, दो रोज की बात हो गई। तो उधर क्या हो रहा है घर पे, जो अभी बछड़े है ना बछिया बछड़े वो सब बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे मुंबई जैसे, सब बोलते हैं मनुष्य की भाषा बोलते हैं। तो जाकर मैयाओं को बता रहे हैं, बताओ मैया कन्हैया ने आज ऐसे कियो वैसो कियो, ऐसे सब बताते रोज ना। तो मैया भी प्रेरित हो रही है, तो मैया जो है ना गाय मैया वो गोपालों को बोल रही है, अरे हमको अभी तुम्हारे साथ जाने को बोर हो रहा है, हमको कन्हैया के साथ जाना है, हमारे बालक आकर के कितना क्या क्या बताते रहते हैं, कभी हम उनके साथ जा सकते हैं। तो रोज गैया मैया जो है वो गोपालों को ये बता रही है घर पे, ये है नंदगांव की गैया भी आके बता रही है नंद बाबा को, अरे हम कब जाएंगे उनके साथ, हम कब साए, हमारे बच्चे जो है वो हमको आके बताते रहते हैं उसके बारे में, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, और हम तो आपके साथ ही जाते रहते हैं। तो ये बहुत दिन चलता रहा, और अभी घर पे भी चर्चा होती रही कि बच्चा बड़ा हो गया। अभी वो और एक भी लीला उसके अंदर है कि वो अभी यशोदा कुंड में स्नान करने जाता है ना, तो वो मुख मार्जन तो कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, स्नान करने का समय आया ना कपड़ा उतार के तो ये भाग जाता है। तो बोले क्यों, सब गोपियां चर्चा कर रही क्यों ऐसा कर रहे हैं, अरे वो बड़ा हो गया ना अभी, वो शर्म आती है उसको तुम्हारे सामने कपड़ा खोल के स्नान करने के लिए, और पता नहीं कहाँ जाके स्नान करके आ जाता है, बोलते मैया स्नान हो गया। तो यशोदा को समझाते हैं बुजुर्ग गोपियां, अरे वो बड़ा हो गया अभी, वो तो युवा अवस्था में थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है, उसको शर्म हो रही है अभी, संकोच हो रहा है। तो उधर भी पता चल रहा है कि हमारा बालक बड़ा हो रहा है, उसके कपड़े जो है ना वो टाइट हो रहे हैं, उसको अभी नए अंगरखा लाना चाहिए, सब कुछ समझ रहा है कि भाई बालक की वृद्धि हो रही है। और एक दिन ना, मतलब आप समझो कल का दिन, 21 नवंबर का क्या दिन था, कार्तिक शुद्ध सप्तमी के दिन, उस दिन ना कहर हो गया पूरा, मतलब इट वॉज हाइट। वो दिन वो ग्वाल बालों ने इतना चिढ़ाया कि तुम तो बिल्कुल किसी काम के ही नहीं हो, इतने बड़े हो गए 5 साल के फिर भी अभी भी तुमको बाबा बड़ी गायों का जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, कैसे हो तुम कन्हैया, हाँ इतना माखन खाते हो चोरी करते हो लेकिन बड़े तो तुम हो ही नहीं, बाबा के अंदर विश्वास नहीं पैदा कर सके। उस दिन कृष्ण भगवान बहुत रोए, इतना रोए कि उनको वो जो लांछना जो थी ना वो सहन नहीं हो पाई अपने ग्वाल वालों की। तो कैसे होता है रोज, कैसे होता है वो उनके लिए आने आके इंतजार नंद बैठक में इंतजार करते हैं, फिर वो सब सुनाते हैं क्या क्या हो गया, फिर वो गोद में बैठकर कनुआ बलुआ कुछ कुछ सुनाते हैं, फिर सुनने के बाद शांति हो गई तो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके स्नान होता है, फिर वो गीत गाए जाते हैं स्नान के, फिर उसके बाद में माखन मिश्री, माँ का दूध, उसके बाद में लोरी, और पूरा कार्यक्रम होने के बाद में सोने का कार्यक्रम होता है। उस दिन जब आए ना, नंद बैठक किसको मिले नहीं, सबको देखा, दुर्लक्ष किया, सीधे ऊपर अकेले चले गए और उल्टा मुंह करके बिस्तर पे सो गए। नाराज थे ना वो, बहुत बहुत गुस्से में थे, बोले क्या पावा तुम इतना मेरे साथ प्यार करते हो, विश्वास नहीं करते मुझे, बोल नहीं रहे, मन में ही तड़प रहे, सो जाते हैं। अच्छा देखिए आप, ये तो कृष्ण का सीन है, नंद बाबा का यशोदा का क्या सीन है। दिन में सभी ग्वाल बाल उनको टोक टोक के परेशान कर दिया, किधर, गौचरण के सली में, वस्त्रपाल के चरण में, और घर में क्या चर्चा हो रही है, शांडिल्य मुनि को बुलाया उन्होंने उस दिन, नंद बाबा ने यशोदा मैया ने, बोले बहुत दिन से चर्चा चल रही है, गौवें भी कह रही है और हमारा भी विचार चल रहा है, हमें भी कंप्लेंट करते रहता है वो, तो इनको ना अभी सोचा कि हमने बड़े गायों का जिम्मेदारी दे ही दिया जाए, आप महाराज जी मुहूर्त निकालो। अभी शांडिल्य मुनि नंदगांव के आचार्य हैं, रेसिडेंट सन्यासी ऑफ नंदगांव, एक मिनट ना, राधे राधे। तो शांडिल्य मुनि ने अपना पंचांग खोला, बोले कली को तो मूर्त है बढ़िया, कार्तिक बद्य अष्टमी को मूर्त बहुत बढ़िया है, अरे कली कर दो ये साफ काम। तो जैसे ही शांडिल्य मुनि का, अभी देखो एक ही दिन बचा है ना तैयारी करने के लिए, बहुत काम है, अभी हम रवि को बोलेंगे अरे कल अपने को अमला नवमी करना है, तब एक ही दिन बचा है, अभी सब कुछ अमला नवमी का उत्सव करना है, जो कल वास्तव में है, भाई देव ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, वास्तव में कल अमला नवमी है, हमारे हॉस्पिटल में पूजन होगा। एनीवेज तो बहुत सब काम था, तो सब काम पे लग गए, पूरा यज्ञ की व्यवस्था किया, सब पूजा की व्यवस्था, सामग्री लाया, वो रत्न की छड़ी लाई वो लकुटी के रूप में, और बहुत सारा विधि होता है ना, हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं होता है, अभी वो शादी करने तो कोर्ट में जाएंगे, दो चार साइन करेंगे, ताली बजाएंगे, चले आएंगे, हो गए शादी। और हमारे हिंदू धर्म में कैसे होता है, सात सात दिन शादी होती थी पहले, अभी तो दो घंटे की हो गई है, लेकिन सात सात दिन शादी होती थी। वैसे बहुत विस्तार पूर्वक विधि पूर्वक ये बड़ी गायों की जिम्मेदारी गौचारण की देने का विधि का तय हो गया, तो बहुत बिजी हो गए, और वो बहुत उत्सुक थे कि अभी जो काना लौट के आएगा ना, तो उसको खुशखबरी देनी है कि टुमारो वी विल गिव यू काउज, लेकिन वो मौका कहाँ दिया उसने, सीधे गया और उल्टा मुंह करके सो गया, तो कुछ बोल ही नहीं पाए, और तैयारी जोरदार हो रही है, वो देखने के लिए उसका मूड नहीं था, मतलब वो दिखाई नहीं उसने कुछ, रात का समय था, सो गया। अभी क्या हुआ, ये खबर सब ग्वाल बालों को मिल गई कि कल कान्हा जी को बड़े गायों का जिम्मेदारी देने वाले हैं, गायों को पता चल गया, बछड़ों को पता चल गया, अब ऐसा नहीं कि बड़ी गाय आए तो बछड़े का छुट्टी हो गया, नहीं नहीं बछड़े बोले हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हमारा तो रोज का अधिकार है, आप संग में आना हमारे, ऐसे नहीं कि आप जाएंगे आपके संग में हम जाएंगे, नहीं नहीं आप हमारे संग में आपको आना है। तो मैया लोग भी आए, गए गाय लोग, और ये बछड़े बछिया भी आए, और बकरी बोलते हैं हम लोग क्यों नहीं आए, भैंसे बोलते हैं हम लोग क्यों नहीं आए, हम लोग भी आएंगे, तो भैंसे भी आ गई, और भैंसा भी आ गए, और बकरियाँ भी आ गई, बकरे भी आ गए, सब आ गए, बोले हमको भी चलना है, ऐसा करके बहुत भीड़ हो गई, लाखों लाखों गायों की भीड़, नंदगांव के तो नंद बाबा के तो 108 झुंड, 9 लाख गायों के 108 ग्रुप से उनके, वो सब आके खड़े हो गए उधर, अपना अपना स्टैंड्स लेके फर्स्ट क्लास, उनको तो पूंछ को मोर पंख लगाया है, पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, मखमल का वस्त्र पहना हुआ है, उनके सिंग पे गोल्डन कैप पहनी हुई है, और क्या क्या थाट उनके गले में घंटा सोने की टंग 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 बज रही है, क्या आनंद है उनका, घुंघरू बांधे पैर को, पैर भी घुंघरू बज रहे हैं, इतना आनंद का वातावरण है। बस एक व्यक्ति बहुत दुखी है, वो उल्टा मुंह करके अभी भी सोया हुआ है। हाँ अच्छा, वो दिन क्या हुआ, रोज सवेरे ना एक मॉर्निंग अलार्म होता है। हाँ मॉर्निंग अलार्म कैसे होता है, सबसे पहले कृष्ण उठते हैं झट से और मुरली बजाते हैं, जब मुरली बजती है ना तो वो मुरली सुनकर सब ग्वाल बाल उठते हैं और झट से तैयार होके आते हैं। लेकिन क्या है ना, अभी देखो आपको बताता था, मैं एक बताता हूँ, थोड़ा सा वो बोध भी होना चाहिए बीच में। रोज अगर आप 5 बजे का अलार्म लगाओगे ना उठने के लिए, तो कुछ दिन आपको नहीं नींद आएगी, मतलब जाग नहीं आएगी शायद, लेकिन बाद में आपको जाग आने लगेगी और नींद गहरी रहेगी, लेकिन अलार्म सुन के आप जग जाएंगे और तुरंत उठ के जप करना शुरू करेंगे। बाद में क्या होगा, किस दिन बैटरी खत्म हो जाएगी मोबाइल की और अलार्म बजेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उठेंगे, अरे लगता है अलार्म क्यों नहीं बजा, तो घड़ी खोल के देखेंगे अरे तो 5:10 हो गए और अलार्म क्यों नहीं बजा, तो बैटरी खत्म हो गई। लेकिन 5 आपको आदत से जाग आएगी, है ना। तो रोज तो मुरली का अलार्म रहता है, आज तो मुरली का अलार्म बजाए नहीं, बजाए मुरली बजाई नहीं उसने, तो नाराज है ना वो, तो लोगों को जाग आ गई, ग्वाल वालों को। वो झट से उठे, देखा अरे सूरज तो ऊपर आने लगा, मतलब अभी दिन आने लगा है। और आज सब खबर तो थी उनको कि गौचारण को जाने वाले हैं, तो अभी क्या आनंद क्या अपने उसके अंदर, उसके अंदर आनंद की बात क्या बताऊं। रोज है ना वत्सपाल लीला में सुपरविजन के अंडर होता था गौ पालन, मतलब वत्सपाल लीला, वो कहते ना बिवेयर यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, मतलब जहां भी आप जाओगे ना आपको टीवी देख रहा है, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर, कोई मॉल में से चोरी मत करना, कोई डब्बा वब्बा उठाना नहीं वहां से, वो पकड़ेंगे आपको वहां से। तो बिल्डिंग में आएंगे तो बोलेंगे ध्यान रखे आप हमारे क्लोज टीवी के अंदर हैं, आपको देख रहे हैं। तो वैसे यशोदा मैया का नियम था, वो अपने नंदगांव के सबसे ऊंचे झरोके में जाएगी, चारों तरफ झरोके टॉप पे, और चारों तरफ उसको दिखना चाहिए, उसकी नजर के रेंज कहाँ है, कवरेज उधर तक ही जाना है आपको। तो सब बालकों को पता है कि हमको जो भी करना है ना, माता पिता देख रहे हैं ऊपर से, हमको अपने आप को कुछ करने का परमिशन नहीं है। अभी आज का आनंद क्यों है, गौचारण करना मतलब वो CCTV के रेंज के परे जाना है, वहां तक CCTV की रेंज नहीं होगी, ये कितना भी चढ़ के ऊपर देखेंगे झरोके से तो दर्शन नहीं होगा, आज से दूर जाने को मिलेगा। और जो दिल में है वो करने का मौका मिलेगा, कृष्ण और मिलकर बलराम मिलकर हम लोग इतनी शरारते करेंगे, आज हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा आज के बाद, ये मन में आनंद है ग्वाल वालों के। और मैया को टेंशन है कि आज से हमारे नजर से भी दूर चला जाएगा, पता नहीं कौन से जानवर आएंगे, पता नहीं कौन से कंकड़ काटे कुटकर लगेंगे, ये उनके मन में टेंशन है, इनके मन में बस खुशी है, तो सब ग्वाल बाल खुश है। लेकिन अभी तक कृष्ण उठा नहीं है, दिन भी ऊपर आ गया है, मैया ने कई लोरियां सुनाई, अलग अलग राग में सुनाई, लेकिन अब तो उठता ही नहीं है, क्यों नहीं उठता है बताओ। अरे जो सोया हुआ रहता है ना उसको जगाना आसान होता है, क्योंकि वो जग गया है तो उठ जाता है, लेकिन जो सोने का बहाना करता है उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें से हम लोग होते हैं बहुत सारे लोग, हाँ इधर से उधर मुंह करते हैं बस, लेकिन उठना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि हम लोग सोने का ढोंग कर रहे हैं। उसके बाद नंद बाबा के पास जाती है यशोदा मैया, बोलते क्या कर रहे हैं अभी इसका, जाके बोल दो जोर से, अरे कान्हा तुम्हें आज बड़ी गायों की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आज गौचारण करना है आपको, जाके जब चिल्लाया कान में जाके तो झट से ऐसे स्प्रिंग बॉल जैसे उठ के खड़े हो गए, और उस दिन तो एक्सप्रेस तैयारी की, एक्सप्रेस मतलब क्या, अभी देखो जो आपको पिकनिक जाना है पिकनिक, हाँ और 7:15 के बस का टाइम है, आप 7 होते रहे और 7 को बोले अरे अरे मूर्ख व्यक्ति उठो अभी पिकनिक जाना है आपको, तो आप 15 के अंदर ब्रश भी करेंगे, टॉयलेट भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, डब्बा भी भरेंगे, बैग भी भरेंगे, सब कुछ करके भागेंगे, बराबर 7:14 को बस के सामने खड़े रहेंगे। वैसे ये लेट उठे कृष्ण भगवान जो है उस दिन एक्सप्रेस तैयारी, सब शंख स्नान जो भी कुछ था एकदम झटाझट करके, ऊपर श्रृंगार भी करना है अलग से, आज गौचारण का विधि है और मंत्र बोलने हैं और यज्ञ करना है, बहुत सारा चीज है। जैसे ये बाहर आए ना देख कर दंग रह गए, अरे लाखों गायें खड़ी है झुंड झुंड में, और बछड़े भी खड़े हैं, ग्वाल बाल भी खड़े हैं, उनकी गायें भी खड़ी है, सब सज सज के, वो भी पहले से नहीं, आज तो पूरा सज सज के आई है, अलंकारों से सज आई है। अभी पिशांडिली मुनि वहाँ तैयारी थे, तो कृष्ण आए, बलराम जी आए, उनको दोनों को बहुत सारा विधि किया गया, काफ़ी मंत्र बोले गए, बहुत लंबा चौड़ा विधि हो गया। ऐसा उसमें लिखा है जीव गोस्वामी ने कि हर एक गाय की कृष्ण ने पूजा की। अभी मैं सोच रहा था कि भाई एक गाय की पूजा करने के लिए समझो एक्सप्रेस पूजा भी किया, एक्सप्रेस तो 1 लगेगा समझो, और 9 तो खुद की गाय है, तो 9 मिनट कहाँ से आएंगे, तुरंत खत्म हो गया उनका पूजा। तो मैं बहुत सोचता रहा कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। अभी सब जीव गोस्वामी तो कह रहे हैं कि सभी हर गाय की उन्होंने पूजा की, तो मुझे मन में फिर एक ही उत्तर आया, उन्होंने उतने सारे रूप धारण किए होंगे और हर गाय की पूजा की होगी, वही एक शॉर्टकट हो सकता है, और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सब सांग्र संगीत पूजा हो गई, यज्ञ हो गया, आशीर्वाद दिया उन्होंने शांडिली मुनि को, प्रणाम किया उनको, दक्षिणा दिया, माता पिता को प्रणाम किया उनका दक्षिणा, आखिर की विधि बाकी थी, वो है रत्न जड़ित खड़ी छड़ी, रत्नों से भरी हुई छड़ी जो है ना वो आखिरी विधि है, वो देना है। अभी आज से तुम ऑफिशियल कावर्ड बॉय, आज से तुम ऑफिशियल गाय के रखवाले बन गए, गाय चराने वाले बन गए, ऐसे ही पदवी प्राप्त होती है। मैंने आपको कहा था ना कि सच्चा ब्रजवासी होता है ना वो 50 साल भी जीवन के ब्रज के बाहर रहा ना तो 51वें साल में ब्रज में आएगा और छड़ी लेकर नंगे पैर में गाय चराएगा, तब जाकर वो ब्रजवासी के पदवी मिलेगी उसको। और वो मृत्यु के पहले उनको वो पदवी चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हर ब्रजवासी ना बाहर विदेश से आता है, जीन पैंट पहनता है लेकिन गाय जरूर चराता है, मैंने देखा हुआ है। बरसाने में भी लास्ट कैंप में देखा मैंने, बड़ा पढ़ा लिखा ऐसा एकदम हाई फाई लड़का, बोले क्या कहाँ से हो, बोले बाहर गाँव पढ़ता हूँ, तो उधर गाय चरा रहा है छुट्टी के दिन आके, है ना, वो उनका साई भाव है। तो अभी वो छड़ी दिया उनको, ऑफिस जाने का आदेश दिया। अभी मैया बहुत टेंशन में है, अरे दूर जाएगा मैं तो देख नहीं पाऊंगी उसे, और कांटे लगेंगे पता नहीं, कंकड़ लगेंगे, जानवर आएगा, सबको ना मीटिंग लेके उसको ओरिएंट करके रखा है। देखो बलराम, देखो बलदाऊ, तुम तो दाऊ जी हो, बड़े भैया हो उसके, तुम्हारा काम है उनको सुरक्षा करने के लिए, तुम तलवार वलवार डंडे लेके रखो, मंडली भद्र को बोल के रखो, वो एक बड़े गोपों का एक समुदाय है। कैसे ना, तीन प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक कृष्ण से बड़े उम्र के होते हैं, एक ग्रुप कृष्ण के समवयस्क होते हैं, एक उम्र के होते हैं, और एक छोटे उम्र के होते हैं, वो जो टॉडलर्स है ना, जो वो घर में सेवा करते हैं, तातुर किम कर रहा क्या करूँ ऐसे सेवा में रहते हैं। तो बड़े गोपों को बुलाकर यशोदा ने अच्छे ओरिएंट किया था, खास करके बलराम जी। कहते हैं कि अगर बलराम जी नहीं होते तो कभी कृष्ण कृष्ण को यशोदा माई गौचारण करने का परमिशन नहीं देती, इतना विश्वास था बलराम के ऊपर कि बलराम रक्षा करेगा। तो बलराम जी को पूरा ओरिएंट करके रखा था कि चारों तरफ चलना, खास करके जमुना जी के बाजू में जाएगा ना तो बड़ा शरारती लड़का ही है, कि जमुना जी में कूद पड़ेगा तो पता नहीं नुकसान हो जाएगा, तो देखना कि जमुना जी में पास जाने मत देना, उसको पेड़ की शाखाओं पर चढ़ने मत देना, वहाँ से कूदेगा तो अपनी जख्मी हो जाएगा। ऐसे जहाँ जहाँ अपना लड़का शरारत कर सकता है वो सब जगह से उन्होंने ओरिएंट करके उनको तैयार रखा था। तो सब कुछ करके जाने का समय आया तो मैया कहते रुको रुको जरा, और दो जूता जोड़ी जूता और दो छतरी लेकर आई और बोली कि देखो अभी तुम दूर जाओगे ना, अभी तुम ना कांटे कंकड़ पत्थर में चलोगे, तुम्हारे पैर इतने मुलायम हैं तो अभी जूता पहन के जाओगे आप, अच्छा रहेगा, और धूप भी होगी दोपहर में, क्योंकि वत्सपाल लीला में एक नियम था कि लंच तक ही आपको लौट के आना है, आपका शाम तक का कुछ काम नहीं है, क्योंकि लंच को बाबा घर पे आएंगे तो बाबा के साथ लंच लेना है, ये उनका वत्सपाल लीला का नियम था। तो वो दोपहर को धूप के आने के पहले ही घर पे आ जाते थे, तो फिर वो धूप का इतना परेशानी नहीं था। अभी तो तुम शाम को लौट के आओगे, क्योंकि बड़ी गैयाओं को दूर तक चराना पड़ता है तभी वो दूध देती है, तो दोपहर को धूप लगेगी तो आपको छतरी लगेगी ना, तो छतरी भी दे रही हूँ ले लो, और बीच में भूख लगेगी ना आपको दोपहर को, अभी तो कुछ भोजन बांध के दे रही हूँ लेकिन बीच में लंच के समय भूख लगेगी तो मैं गोपियों को भेजूंगी, वो आपकी मुरली की आवाज़ सुनकर आपका पीछा करते करते आएंगी, और उसको कहते हैं छाक, छाक यानी आफ्टरनून का पैकेट, तो वो छाक लेकर आएंगी, फिर आप छाक ग्रहण करना, उसको कहते हैं छाक लीला, बैठेंगे गोलाकार और छाक ग्रहण करेंगे। तो ये सब हुआ तो कृष्ण ने कहा क्या एक श्लोक बताया मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो या ओके कोई बात नहीं, उसका अर्थ यह है कि गोपाल को वैसे रहना चाहिए जैसे गाय रहती है, ये उस श्लोक का अर्थ है। मतलब क्या, अगर गाय जूता पहन सकती है पहनती है तो मैं जूता पहन सकता हूँ, अगर गाय छतरी धारण करेगी तो मैं छतरी धारण कर सकता हूँ। तो मैया कहती है कि देखो मेरे पास केवल दो जोड़ी जूता है और एक जोड़ी छतरी है, मेरे पास इतने 9 लाख गायों के लिए 36 लाख जूता नहीं है, 9 लाख छतरी भी नहीं है, तो मैं नहीं लूँगा फिर, नहीं लेना पड़ेगा आपको, नहीं 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 मैं नहीं लूँगा। आखिर में झुकझुक हो गया और ये फिर जीत गए, बोले मैं नहीं लूँगा, अभी देखो ऐन मौके पे ये डिस्कशन हो रहा है, ले लो नहीं लूँगा, ले लो नहीं लूँगा, तो गाय सब सुन रहे हैं और उनको समझ गया कि हमारे कन्हैया तो अभी सुनने वाले नहीं हैं और ये जूता पहनने वाले नहीं हैं, और दूर दूर जंगल में बड़े बड़े कांटे कंकड़ पत्थर होते हैं, इनके मुलायम जैसे पैर जो मक्खन जैसे पैर है उसमें बहुत कष्ट हो सकता है। तो वो ना डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, वो सब सब जगह भाग गए चारों तरफ, चारों तरफ क्यों भागे, उनको पता नहीं है कि आज का पहला दिन किस दिशा में गौचारण करेंगे, और शायद पूरब में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो चार डिवाइड करके चारों दिशा में सब गाय चले गए और अपने सख्त पैरों से कूट कूट कर सारे पत्थर कंकड़ कांटे जो है ना पाउडर बना दिया उनका पूरा, मखमल पाउडर बना दिया पूरा। और इतना कृष्ण के प्रति प्रेम था उनके मन में, उनके थन जो है ना वो दूध से भरकर जमीन को टच कर रहे थे और उसमें से कृष्ण के विचार से वात्सल्य की वजह से टप 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 दूध गिर रहा था। तो इतनी मुलायम टैल्कम पाउडर जैसे वो रज बना दिया पूरा ब्रज का चारों तरफ और दूध भी टपका दिया ऊपर, मक्खन जैसा मुलायम ठंडा ठंडा जमीन बना दिया और लौट के आगे खड़े हो गए। और आते आते डिस्कशन भी किया उन्होंने, देखो अभी ये मुलायम मुलायम गिली गिली जमीन पर जब चलेंगे ना तो कृष्ण बलराम के दोनों चरणों के चिन्ह निर्माण होंगे उनके दिव्य चिन्हों के साथ, तो ये ब्रज का अलंकार होगा और हमारा ये बहुत बड़ा प्राप्ति होगी। तो हम सब लोग वादा करते हैं, ग्वाल बाल और गाय ने मिलकर डिस्कशन किया और एक रेजोल्यूशन किया, निर्णय लिया कि हम लोग किसी भी कीमत पर कृष्ण बलराम के दोनों दोनों चरणों पर कभी कदम नहीं रखेंगे, उनको बनाए रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। कैसे किया होगा मुझे समझ में नहीं आता है। चार चरण चिन्ह और ये लाखों लोगों के गाय के चार चार और मनुष्य के दो दो और लाखों करोड़ लोग थे वहाँ पर ग्वाल बाल के रूप में, कैसे उन्होंने किया होगा, लेकिन किया जरूर। यही वृंदावन धाम की महिमा है। खड़े हो गए वापस, तो भैया अभी क्या करेंगे, जूता और छाता लेके गए वापस, लेकिन वहीं खड़ी है वो, जा नहीं रही वापस। इनको विदा करने का मंत्र भी हो गया अभी, हाँ गच्छंती का मंत्र भी हो गया, लेकिन वो वहीं खड़ी है और ये चलने लगे आगे और मैया भी पीछे 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 आ रही है। अरे जिस चीज से हमको फ्री होना था वो हमारे साथ साथ आ रही है। जिनके सुपरविजन से हमको मुक्त होना है वही हमारे पीछे पीछे आ रही है। अच्छा उसमें और एक बात हो गई, ये चल ही रहे थे उतने में गोपियों को खबर लग गई कि अरे तो आज तो गोपाष्टमी, आज के दिन यहाँ पर गौ गौ का इनको संभालने का जिम्मेदारी दिया जाने वाला है, सब लोग आ गए थे। तो राधा रानी बहुत व्याकुल हो गई, मतलब मुझे भी जाना है, आई वॉन्ट टू गो विद देम। कैसे जाएंगे, वो जा सकते नहीं ऐसे ना। तो ललिता के पास मुकदमा आया, अरे ललिता जी क्या करें, जाना है मुझे, कैसे भी करके उपाय बताओ, कोई भी समस्या होगी ना ललिता इज द पर्सन, उसके जाके पूछने का क्या करना है। और इनके तरफ से कौन है, सुबल। कोई गोपियों के बीच समस्या हो गई ना तो उज्ज्वल और सुबल दो है, वो बीच के मीडिएटर है, बराबर जाके समझाते हैं, सुनो मैसेज देते हैं और सुलह कर देते हैं। तो ललिता ने कहा अरे अच्छा आइडिया है, देखो वो सुबल जो है ना उसका चेहरा शरीर यष्टि तुम्हारे जैसी है, हम सुबल को बुलाते हैं और सुबल का कपड़े तुम लोग पहन लो। तो राधा रानी फेटा बांधती है, हाँ राधा रानी फेटा बांधती है, मैंने आपको कल दिखाया क्या चित्रपट वो, हाँ दिखाया ना आपको मैंने, कृष्ण बलराम मंदिर में दिखाया ना, राधा रानी फेटा बांध के खड़ी है और अभी मैं फेटा तो बांधूंगी बालों को छुपाने के लिए, लेकिन जो मेरा उन्नत वक्षस्थल है उसको क्या करूंगी, बोलो कोई बात नहीं एक छोटा बछड़ा छाती पर ले लेना तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे करके ना राधा रानी और सब गोपियाँ पहले तो भाग भाग के आई, कैसे घाघरा उठा के भाग भाग के आई, इसलिए वो चरणों का दर्शन होता है इस दिन, हाँ सभी गोपियों के चरणों का, सब लोग गोपियां कृष्ण को गौचारण का आरंभ हो रहा है ये देखने के लिए अपने घरों से छतों से भाग भाग के आई घाघरे उठाकर, तो सबके चरणों के दर्शन होते उस दिन, ये भाव है। और उसके बाद में फिर राधा रानी एक बछड़ा छाती पर लिए हुए फेटा बांधकर सुबल बनकर उनके साथ चली गई, ये उस दिन की लीला है। उसके बाद कृष्ण बहुत चले गए और छुप छुप के राधा रानी को मिले बीच में छाक आई, लेकिन हुआ क्या, बहुत आनंद किया ग्वाल बालों ने, अरे इतना दूर जाने के लिए इतना थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर आज मिला कि कोई कंट्रोल नहीं, कोई सुपरविजन नहीं, कुछ नहीं, सीसीटीवी नहीं, कुछ नहीं, तो आनंद आया बहुत उनको। और उसके बाद में जब संध्या होने लगी तो मैया तो क्या ना ऊपर नीचे हो रही है, बार बार ऊपर जाके देख रही है, सूरज अरे क्या आज इतना स्लो क्यों जा रहा है तू, अभी तक ऊपर ही है कब नीचे आएगा, कब मेरा लाला लौट के आएगा, इतना स्लो मोशन में क्यों चल रहा है, ऐसे सूरज को गाली दे रही है और हर एक घड़ी में वापस जाके देख रही है। आखिर में सूरज नीचे आया, इसको रहा नहीं गया, फिर वो नीचे आई सबको लेकर, बोले अभी नीचे बैठ के इंतजार करेंगे इसका। उधर क्या हुआ, उधर दिन भर खेले कूदे, पेड़ में से मेंढक बने, पक्षी बने, छाक आई छाक खाई बीच में गोलाकार बैठ के, बड़ा आनंद लिया उस दिन, इतना आनंद, द हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम, मुक्त होने का, मोक्ष का आनंद लिया उन्होंने उस दिन। तो फिर लौटने का समय आया, अभी हमारे कन्हैया थक गए, क्योंकि पास में जो खदीर वन है इधर वो पिसाया है, वहाँ जाने का उनका एक्सपीरियंस था ना, अभी देखो कोरोना में हम लोग बैठे घर पे, कभी बहुत महीने बाहर ही नहीं गए, एक दिन बरूली गए गाड़ी से गए, अरे थके लौट के आए, क्योंकि आदत नहीं ना, अभी आदत खत्म हो गई यात्रा करने की, सफ़र करने की, चलने की वगैरह, तो वैसे ही वो पहले दिन बाहर गए दूर तो थक गए बेचारे, अभी चेहरे पे थकान दिखान दिखने लगी उनके। तो ग्वाल बाल तो बहुत चतुर है ना सब लोग, ग्वाल बाल क्या सोच रहे हैं, अगर हमारे कान्हा के चेहरे पर ये थकान दिखाई पड़ी ना तो फिर अगले दिन यशोदा मैया कैजुअल लीव मांगेगी उसके लिए, हाँ छोड़ेंगे नहीं उसको, बोले लाला बहुत थक गया अभी आज नहीं आ सकते, वो बहुत थक गया कल आएगा वो। क्या बोला मैंने, आज अगर शाम को लौटते हुए कान्हा को थका हुआ चेहरा मैया ने देखा तो कल वो नहीं भेजने वाली है इसको, तो अभी क्या करेंगे, इसको हंसाएंगे, हंसे विनोद करेंगे, जोक करेंगे बहुत सारा। हाँ तो क्या होता है आपको पता है हंसने से क्या होता है, पता है आपको, हंसने से ना पेट पर दबाव आता है, पेट पर दबाव आने से जो खून का वो है ना रक्ताभिसरण वो ऊपर की दिशा में होता है, तो चेहरे की ओर भूत खून बहता है हंसने से, तो चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, थका हुआ चेहरा भी आप थके हुए आदमी को हंसाओ एकदम फ्रेश दिखने लगेगा वो, तो उसको बहुत हंसाते हैं, बहुत जोक बताते हैं, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, तो कान्हा बहुत हंसते 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 ना उसका चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, बोले ये चेहरा जो प्रफुल्लित है ना वो मैया तक होना चाहिए, मैया को मिलने तक। तो उसको लेके आए, कान्हा बहुत हंसे 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 खुश हो गए, थोड़ा थकान दूर हो गई उसकी। उतने में फिर एंड में आए तो वो उधर टेर कदम नाम की जगह है, वो टेर कदम में आए, वो वहाँ पर एक सुंदर लीला होती है, बहुत ऊंचा पेड़ था कदम का, वो देखो लाखों गाय है ना वो, कारी धूमर कोरी कारी कितने प्रकार के भूरी, देखो एक तो काली है एक तो गोरी है एक तो भूरी है ब्राउन कलर की है, फिर एक तिलकिनी हाँ जिसके ऊपर तिलक नेचुरली बना हुआ है, ऐसे तो मैंने बहुत देखे गाय, और एक होती मृदंगिनी जिसका चेहरा मृदंग की तरह है, फेस इज लाइक मृदंगा, और फिर काले के ऊपर काले गाय के ऊपर सफ़ेद धब्बे, फिर सफ़ेद गाय के ऊपर काले धब्बे, फिर ब्राउन गाय के ऊपर वाइट धब्बे, ब्राउन के ऊपर ब्लैक धब्बे, ऐसे गाय के झुंड अलग अलग प्रकार के, हाँ अलग अलग प्रकार के गाय के झुंड हैं, तो सभी लाखों गाय जो है ना वैसे घूमते घूमते आनंद में आ रहे हैं, अभी आज से हमको कृष्ण के साथ चलने का मौका मिला, कितनी भाग्य की बात है, किसी को घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ऐसे ही खेल रहे हैं। तो वो जो डेढ़ कदम है ना वो बहुत पास में नंदगांव के, तो कृष्ण भगवान सबके ऊपर डाली में चढ़ गए, मुरली निकाली और चौथी धुन बजाई, वो आठ धुन बजाते हैं एनीवेज कभी और बताएंगे आपको, फोर्थ धुन बजाई क्यों, क्योंकि चौथे धुन में गाय की पुकार होती है, धुन तो एक ही बजती है लेकिन जब गाय के कान में पड़ती है ना तो गाय को अपना नाम सुनाई पड़ता है, जैसे सुरभि कालिया नंदीमुखी, हाँ ऐसे जो नाम है ना गाय के, वो सब गाय के नाम ये चौथी धुन से हर एक गाय को सुनाई पड़ते हैं, तो ये बजाते हैं तो अपना नाम सुनकर गाय दौड़ के आती है, उनकी मुरली की ध्वनि से मग्ध मुग्न मतलब मंत्र मुग्ध होकर पागल से होकर आनंद विभोर होकर कैसे दौड़ के आती है, ऐसी आंखें ऊपर कहाँ से ध्वनि आ रही है, हाँ कान भी ऊपर सुन रहे हैं और पूंछ भी ऊपर, हाँ और स्तब्ध होकर चित्रपट जैसे होकर सुन रहे हैं ऐसे, और वो जो भाग रहे हैं तो बछड़े भी भाग रहे हैं, वो तो आंचल के पीछे भाग रहे हैं, मैया भाग रहे हैं तो आंचल भी भाग रहे हैं, तो भागल के पीछे बच्चे भी भाग रहे हैं, तो वो मैया आके रुक जाती ना पेट के नीचे ऐसे मुंह करके, तो ग्वाल बाल तो उनके आंचल को लगे हुए हैं दूध पीते हुए, लेकिन ग्वाल बाल भी वो मुरली आवाज सुनते हैं, और वो ग्वाल बाल सॉरी नहीं ग्वाल बाल नहीं बछड़े बछड़े गाय के बछड़े और बछिया वो तो दूध पी रहे ना, लेकिन आ ऐसे हो जाते हैं दूध पीना ही भूल जाते हैं, उनके मुंह में जो दूध खींच कर रखा हुआ है ना वो भी अभी टपक के जमीन पर गिर रहा है, और उनके मुंह का अंदर का दूध का प्रसाद वो तृण के पत्ते पा रहे हैं, समझ में आया कुछ आपको, सुरभि गाय के बालक उनका दूध पी रहे हैं, और वो जितना दूध अभी खींचा हुआ है उसको पीना है ना, वो पीना भूल गए तो मुंह में जमा हो गया वो, और सुन रहे हैं ऐसे बड़ी आंखें करके पूछ भी ऊपर आंख भी ऊपर कहाँ से आवाज आ रही है, और पृथ्वी माता के तृण के पत्ते उसको पा रहे हैं। अच्छा बहुत सारे इकट्ठा हो गए सब, लेकिन कुछ गायें ऐसी है ना वो सुन के भी अनसुना करती है, बहुत शाणी होती वो, सुन के भी अनसुना करते, क्यों, क्योंकि उनको ना पर्सनल अटेंशन चाहिए, और कृष्ण जानते हैं कि ये गाय तो ऐसे मुरली बजा कर नहीं आने वाले हैं, तो सभी गायों को सब गाड़ झाड़ से उतरते हैं तो कदम से, कहते आप रुको यहाँ पर मैं अभी आता हूँ, और जाके ना उन गायों को जो जानबूझकर अनसुनी कर रहे हैं ना उनको जाके थपथपा के प्रेम करके चुम्मा लेके सबको लेके आते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, तभी वो आ जाते हैं, और सबको इकट्ठा करने के बाद फिर मुरली उठाते हैं और फिर मुरली बजाते हैं, तो उसके पीछे पीछे सब गाय चले जाते हैं। और फिर नंद बैठक पे उस दिन बाबा बैठे हुए हैं और ये दोनों भाग के कनुआ बलुआ भाग के जाते हैं, दोनों गोद में बैठ जाते हैं, दोनों बोलना शुरू करते हैं, भैया इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, किसकी सुनूं। ऊपर से दोनों बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सब भी बात कर रहे हैं, क्या हुआ फर्स्ट डे ना, क्या क्या बताना है आज, क्या क्या किया हमने, क्या क्या थ्रिलिंग एक्टिविटी किया। और वो करके जब वो बताने के शांत हो जाती है तो बाल बाल चले जाते हैं, बोले कल भी जाना है, कल छुट्टी नहीं लेना है, हाँ हाँ मैं बहुत फ्रेश हूँ, कोई चिंता नहीं करना, कोई थका वका नहीं हूँ मैं, ऐसे सब बोल देते हैं और फिर ऊपर चले जाके सो जाते हैं। इस तरह से ये गोपाष्टमी का उत्सव संपन्न हो जाता है। अभी मैंने जितने आपको प्रसंग बताया ना, उस हर एक प्रसंग के एक एक गीत हैं, वो गीत गाते 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 वो लोग उत्सव संपन्न होता है। अभी देखो वो जो रमेश चंद्र गोस्वामी है ना, उनके पिताजी थे देवकी नंदन शास्त्री जी, हाँ इतने बढ़िया भक्त और इतने बढ़िया वैष्णव आचार्य थे कि 18,000 श्लोक भागवत के उनको कंठस्थ थे। कहीं से भी बोलो आप, षष्ठी छंद का हाँ अजामिल का कोई श्लोक बोल दो, उसके आगे पूरी भागवत बोलेगी वो, कहीं से भी बोलो, इतना वो पंडित और इतने विद्वान थे। और रमेश बाबा जी महाराज जो बरसाने के हैं, इतना उनका सम्मान करते थे, रमेश बाबा जी के साथ गद्दी पर कोई बैठा नहीं आज तक, वो हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी और नंदन शास्त्री जी बस, और कोई उनके गद्दी पर बैठता नहीं था, इतने महान पुरुष थे वो। तो उनका ऑपरेशन था तो इसलिए वो मुंबई में मेरे घर पे रहने के लिए आए थे, हाँ और करीब करीब शायद 2 महीना रहे मेरे घर पे, मैं नए नए घर में शिफ्ट हो गया था। तो पहले नए घर के मेहमान कौन, नंदन शास्त्री जी, उनके पुत्र रमेश चंद्र जी और उनके पुत्र उनके सहायता के लिए, दो दो एक साथ, हाँ ऐसे मिनिमम 4 लोग हमारे घर पे ना चेंज होते रहे, वो एक बच्चा गया दूसरा बच्चा आया वगैरह सब चेंज होते रहे, लेकिन हमारे घर पे रहे। तो अभी उस पर गोपाष्टमी आ गई, अरे अभी दादाजी का ऑपरेशन होने वाला है, अभी वो कैसे जाएंगे सब, तो एक को तो रहना ही पड़ा और रमेश चंद्र जी भी रहे और सुशील जी भी रहे, बाकी तो चले गए, लेकिन 3 तो लोग रह गए। अभी मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने, हाँ क्या उत्कंठा थी उनको, हाउ मच ईगर देवर, क्या हो रहा है अभी, अभी कहाँ गए, तो लोग बता रहे फोन पे उनको कि अभी ना निकल रहे हैं, अरे अभी निकल गए, अभी हाँ आगे निकल गए, अभी फिर वो डंडी भी दे दिया उनको, अभी लकुटी भी दे दिया, अच्छा क्या अभी छाक लीला हो रही है, अभी जो वन में छाक हो रहा है, अभी वो ठाकुर जी कौन बने, अरे याको बच्चा बनोए, याको बच्चा बनोए, वो कनुआ बनोए, बनुआ बनोए, ऐसा करके अभी वो कंधे पे लेके जा रहे हैं वगैरह वगैरह। पूरा दिन ना रनिंग कमेंट्री चलती रही, पूरा दिन वो फोन करते रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और अभी कहाँ आ गए, अरे वो तो 1.5 कदम आ गए, अभी 1.5 कदम पे फिर गीत हो रहे, कौन सा गीत गा रहा है, तो गीत वो हमको वहाँ पे सुना रहे हैं, वो हमको सुना रहे हैं मोबाइल पे यहाँ पर, देखो प्रभु जी देखो यहाँ पर ये गीत चल रहा है, अभी वो 1.5 कदम पे गीत गा रहे हैं, अभी उसके बाद में गौचारण का अंत होगा, फिर वो घर जाएंगे, फिर गवों को खिलाएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह से हम लोग भी नंदगांव में रहे उस दिन, पूरा दिन का रनिंग कमेंट्री चलता रहा, इनकी उत्कंठा देखते रहे हम लोग, और शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहा। तो हमको पूरा अनुभव है, हमने वहाँ पर भी गोपाष्टमी अटेंड किया है, मायापुर में भी किया है, वृंदावन में अटेंड किया है और नंदगांव में भी अटेंड किया है फिजिकल, लेकिन इन लोगों का भाव जो था इसका अनुभव हमने अपने घर पे बैठ के किया। हाँ तो इस तरह से नंदगांव का ये सर्वोच्च उत्सव है, बहुत सुंदर। और इस्कॉन के मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में विश्व में, आज के दिन राधा रानी के हाथ में एक बछड़ा देते हैं, ऐसा पैसे पकड़ के खड़ी है, खास करके राधा श्याम सुंदर मंदिर में आज दर्शन होगा, ऐसे बछड़ा लेके राधा रानी फेटा बांध के ग्वाल बाल बन के जा रही है गोपाष्टमी के दिन कृष्ण के साथ में। तो एनीवेज लीला तो भगवान की अगाध है, हमको अपने वृंदावन यात्रा में भी चलना है, हाँ तो चलेंगे, चलो सब लोग हमारे साथ। अभी हम आपको सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको राधा रानी के चरण के दर्शन आज के दिखाएंगे, आज के मायापुर के राधा माधव के राधा रानी के चरण का दर्शन कीजिए, ये हमारी किशोरी माता जी ने हमको सुबह सुबह भेजा, हमने तुरंत उसको उतार के पीपीटी में डाल दिया, बोले फ्रेश दर्शन करना चाहिए। हाँ मन याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, सवाई मन कृष्ण राधा रानी पदारविंदयो, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे ये सुंदर लीला बताने का अवसर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी कल राधा रमण का दर्शन करके यात्रा हमने दिन का समापन किया था। अभी आप एक काम कीजिए, सब लोग उठ के खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए और हाथ ऊपर उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर बैठ जाइए, नहीं तो फिर हमारी कथा उधर आज गोपाष्टमी समाप्त हो जाएगी, बाकी सब नींद में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अच्छा हो गया अभी आप खड़े हो गए, बहुत अच्छा हुआ। देखो दर्शन करता हूँ सबके में, सब लोगों ने अभी हाँ फ्रेश हो गए सब लोग ना, वो क्या है ना वो मुँह की ओर जरा ब्लड सप्लाई हो गया ना तो न थकान दूर हो जाती है, ऐसा मैंने बताया ना आपको पहले से मेडिकली, तो उसका पालन करो, देखो अभी कैसे होता है। जय जय श्री राधे श्याम। तो एनीवेज अभी आपको पहले गोकुलानंद मंदिर में जाएंगे, राधा रमण के मंदिर के गली से लेफ्ट टर्न लेंगे, बाहर निकल कर राइट टर्न लेंगे, जाते वक्त लेफ्ट टर्न, मंदिर से बाहर आके राइट टर्न, सीधे रोड के एंड में जाएंगे तो राधा गोकुलानंद का मंदिर का प्रवेश द्वार आएगा। प्रवेश द्वार से हम अंदर जाएंगे तो ये दृश्य आएगा, देखिए ये दृश्य आएगा, तो दोनों ही सेम है हा? थोड़ा दूर से है राइट वाला, ये वाला थोड़ा पास में से है। अंदर जाके आपको दर्शन मिलेगा, देखिए बहुत सुंदर दर्शन, प्रणाम कीजिए। सबसे राइट में जो है वो राधा विजय गोविंद है, बताऊंगा आपको सब कुछ। उसके बगल में राधा गोविंद विजय गोविंद के लेफ्ट में जो है, हमारे लेफ्ट में गोविंद जी के राइट में राधा विनोद जी हैं। राधा विजय गोविंद जो हैं वो बलदेव विद्याभूषण के हैं, राधा विनोद जी जो हैं वो लोकनाथ गोस्वामी के हैं। उसके उनके राइट में हमारे लेफ्ट में लेफ्ट मोस्ट वो क्या है, पीले रंग की मूर्ति है ना, वो चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है, गौरांग महाप्रभु, वो नरोत्तम दास के द्वारा पूजित है। नीचे उतरेंगे अभी, देखिए मेरा जो एरो घूम रहा है ना, छोटी सी मूर्ति है वो है गोकुलानंद जी महाराज, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा पूजित है। और उसके राइट में आएंगे, हमारे राइट में हाँ, तो अभी दिखाता हूँ आपको, राइट में आएंगे तो वो शिला है, ये देखिए ये शिला है, ये गिरिराज की शिला है, इसके बारे में बताता हूँ सबको, लाइन से बताता हूँ, कोई बात नहीं। तो पहले आप दर्शन कर लो ठीक से, ये एक श्रृंगार है, ये दूसरा श्रृंगार देखिए, राधा विजय गोविंद जी, राधा गोविंद, राधा विनोद जी और चैतन्य महाप्रभु जी। उसके बाद में ये और नज़दीक से देखिए, निकट से देखिए, है ना, तो वही है सीन, विजय गोविंद जी, फिर राधा विनोद जी, गौरांग महाप्रभु जी, गोकुलानंद जी, और उनके नीचे छोटे से यहाँ पर गिरिराज शिला। और ये कौन है, ये राधा विनोद जी हैं, लेकिन ये ओरिजिनल विनोद जी हैं, ये जयपुर में है अभी राधा विनोद जी, हाँ राधा विनोद जी भी औरंगजेब के आतंक में जयपुर चले गए, ये उनके जयपुर का दर्शन है। और ये वो शिला, अभी पहले कथा यहाँ शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को ना एक वो क्या नाम था उनका, शंकरानंद सरस्वती, इन्होंने वृंदावन को भेंट दिया था, और वृंदावन से भेंट में भेंट देने के बाद में उन्होंने ये गिरिराज शिला और जो माला है ना लाल रंग की, इसको गुंज माला कहते हैं, इसको एक ब्लैक डॉट हुआ करता है हमेशा, लाल रंग का मणि होता है और ये ना पेड़ पे आता है, वहाँ पर गुंज माला के पेड़ होते हैं गुंज मणि के, और पहले वो नरम होता है फिर वो सख्त हो जाता है, फिर वो मणि को वो शेंग में से निकालते हैं और फिर माला बनाते हैं उसकी, वो कृष्ण को बहुत पसंद हुआ करती थी, कृष्ण भगवान गुंजमाला पहनते थे, उनका दो वस्तु थी गुंजमाला और मुरली, वो उनको प्राण प्रिय थी। तो ये गुंजमाला और ये शिला लेकर शंकरानंद सरस्वती महाराज जो है ना वो जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु को गुंजमाला और गिरिराज शिला भेंट में दे दी। चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इस शिला को देखकर, कम से कम कहते हैं 3 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने इस शिला को अपने पास रखा और उसका सुगंध लेते नाक से, उसको स्पर्श करते, उसको आंखों में लगाते, उसको हृदय से लगाते, उसकी पूजा करते, उसको सर पे रखते, ऐसे दिन भर इस शिला का बहुत प्रेम से सेवा करते, उनको भोग लगाते, आरती उतारते और बाकी समय गले में तावीज के रूप में पहनते उसको। तो प्रेमाश्रु चैतन्य महाप्रभु के हमेशा इस शिला को भिगाते रहते थे, मतलब ये शिला हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से, प्रेम अश्रुओं से हमेशा भीगी ही रहा करती थी, सिंचित ही रहा करती थी, स्नान ही होते रहता था उसका। 3 साल के बाद में शिला की सेवा करने के पश्चात रघुनाथ दास जी को, गोस्वामी जी को, चैतन्य महाप्रभु ने ये गुंजमाला और ये शिला भेंट में दे दी। और भेंट देने के समय अपना अंगूठा इस शिला में दबाया तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के वजह से वो शिला पिघल गई और वो अंगूठे का निशान उस शिला पे है। आप अगर शिला को गौर से देखेंगे ना तो ऊपर का हिस्सा आपको वो अंगूठे का निशान नहीं दिखेगा। आप देखिए गौर से, एकदम देखिए, इसमें देखिए, क्लोजअप व्यू है। हाँ, इसको स्पर्श कीजिए और प्रणाम कीजिए। शास्त्र में लिखा है गिरिराज शिला को स्पर्श करते ही जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाते हैं। तो ये शिला इस प्रकार से, वो छोटी सी शिला है, ये इस मंदिर का भूषण है। अच्छा, ये जो राइट में है विजय गोविंद जी, इनकी कथा ये है, अभी बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं लेकिन संक्षेप में बताएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये विनोद मंजरी के अवतार हैं। 1600-1700 के बीच में उनका जीवन काल रहा। उस समय गौड़ीय संप्रदाय के लिए बहुत विकट काल था, बहुत अमान्यता और कष्ट की अनुभूति हुई उस समय। तो एक जगह बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही जयपुर में, और जयपुर में वो सभी संप्रदायों की गोष्ठी थी वहाँ पर, और सभी मान्यता प्राप्त संप्रदायों को उधर निमंत्रण था। तो उसमें ना गौड़ियों को निमंत्रण नहीं था। क्यों? क्योंकि गौड़ियों के पास श्रीमद् भागवत पर भाष्य उपलब्ध नहीं है, कमेंट्री ऑन भागवतम नॉट अवेलेबल। क्योंकि गौड़ियों के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, श्रीमद् भागवत सॉरी वेदांत सूत्रों के ऊपर भाष्य नहीं है। जिनके जिनके पास वेदांत सूत्र पर भाष्य उपलब्ध है उनको वहाँ पर निमंत्रण था। और चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वेदांत सूत्र का नेचुरल भाष्य श्रीमद् भागवतम है, तो महाप्रभु के संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर अलग से भाष्य करने की कोई आवश्यकता मानते नहीं हम लोग। लेकिन इसीलिए उनको बुलाया नहीं गया। तो चक्रवर्ती पाद बड़े दुखी थे उस समय कि अगर इस गोष्ठी में हमारा अगर प्रवेश नहीं हुआ तो विश्व में हमारी मान्यता समाप्त हो जाएगी, और महाप्रभु की इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतना महामंत्र जो उन्होंने प्रेम का दान दिया वो सब उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो हमें इस सभा में, गोष्ठी में जाना बहुत जरूरी है। तो फिर उन्होंने कहा बलदेव विद्याभूषण से, क्योंकि उस समय चक्रवर्ती पाद बहुत बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो बलदेव विद्याभूषण जवान थे, उन्होंने कहा आप जाओ, बिना बुलाए जाओ और प्रवेश मांगो उनको। तो वो गए वहाँ पर जयपुर में, प्रवेश मांगा उन्होंने तो उनको नहीं दिया गया। बोलते आपके संप्रदाय में तो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं है, नो कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, अगर आप लेके आते हो तो आपको ले लेंगे। अभी अगर कोई अगर वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने बैठेगा ना तो कई साल लगते हैं उसको। तो उनको पता था कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है, वो समाप्त हो जाएगी, इनका तो भाष्य नहीं आएगा, तो इनको एंट्री नहीं देना है, तो नहीं मिलेगी इनकी एंट्री उनको। तो ऐसे डेस्परेट कंडीशन में जयपुर में बलदेव विद्याभूषण राधा गोविंद जी के मंदिर गए। उसमें रात का समय था, अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, रात का समय था, मंदिर बंद हो चुका था। तो ये एकांत में जाकर रोने लगे, वहाँ पर गोविंद जी को पुकारने लगे, गोविंद जी हमारे चैतन्य महाप्रभु के, आपके संप्रदाय का जो मान्यता है, जो सम्मान है, वो भी आपके हाथ में है, आप ही हमें बचाइए। तो कहते रात में गोविंद जी प्रकट हो गए एकांत में, और गोविंद जी ने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य डिक्टेट किया और बलदेव विद्याभूषण ने उसको उतारा। और ऐसे भगवान की दिव्य दिव्य लीला थी कि इतने हाई स्पीड में उन्होंने जो कई सालों का काम है वो एक रात में पूरा कर दिया। एक ही रात के अंदर पूरे वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य निर्माण किया। तो बलदेव विद्याभूषण ने उसका नाम ही दिया गोविंद भाष्य, क्योंकि स्वयं गोविंद ने उनको डिक्टेट किया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हस्तलिखित गोविंद भाषा लेकर प्रकट हो गए वहां पर मीटिंग में, और सभी सभा में सुनाया। तो सबके वेदांत सूत्र के भाष्य में सर्वश्रेष्ठ भाष्य गोविंद भाष्य निकला और मान्यता प्राप्त हुई सबको, गौड़ीय संप्रदाय को। केवल इनके पास भी है ऐसा नहीं, इनके पास सर्वश्रेष्ठ भाष्य है। इस प्रकार से चक्रवर्ती पाद की प्रेरणा से बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से गौड़ीय संप्रदाय को कहते ना स्पिरिचुअल रेनेसांस, मतलब पुनर्जागृत किया गया, और विश्व में मान्यता प्राप्त करा दिया। इसलिए चक्रवर्ती पाद का जो जो योगदान है ना हमारे संप्रदाय में बहुत विशिष्ट है। उस समय तो गौड़ीय संप्रदाय एक प्रकार से समाप्त ही हो गया था, मतलब था लेकिन मान्यता समाप्त हो गई थी, उनको दोबारा सम्मान प्राप्त करा के दिया। तो वो विग्रह जो हुए थे इनके लिए विग्रह निर्माण हो गए और इनका नाम दिया विजय गोविंद। क्यों? क्योंकि गोविंद जी ने जिनको जिन्होंने विजय प्राप्त कराई गौड़ीय संप्रदाय के लिए, इसलिए उनका नाम रखा गया राधा विजय गोविंद। और बलदेव जी विद्याभूषण इनको पूजन करते थे। बलदेव जी विद्याभूषण ने गीता पर भाष्य लिखा है। गीता क्या नाम है उसका किताब का, बलदेव विद्याभूषण का? गीताभूषण, गीताभूषण नाम का उनका गीता पर भाष्य है बलदेव विद्याभूषण का। और राधा श्याम सुंदर मंदिर में तीन श्याम सुंदर जी के विग्रह हैं। एक छोटा विग्रह है ना, वो स्वयं राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। जो बीच का बड़ा विग्रह है ना, वो बलदेव विद्याभूषण का है। उसके बाजू में और एक बड़ा है, वो है ब्रज जनानंद गोस्वामी महाराज का। तो बलदेव विद्याभूषण को द्वारा पूजित श्याम सुंदर के विग्रह श्याम सुंदर के मंदिर में हैं, जो बड़े बीच के विग्रह हैं। अच्छा, उसके बाजू में है राधा विनोद जी। अब इनकी कहानी सुनो। वो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ जी महाराज को भेजा वृंदावन में, और भूगर्भ गोस्वामी भी मित्रता के प्रेम के वश साथ में चले। उनके दोनों ब्रज में आए, पुकारते पुकारते जंगल में घूमते थे लेकिन कुछ था नहीं प्रकट वहाँ पर। तो ये फिर लोकनाथ जी महाराज बड़े विरक्त थे, इतना रोते थे कि उनको ना कुछ देह भान ही नहीं था, ना भोजन का ना किसी का, हमेशा रोते रोते घूमते थे वो। तो उमराव गाँव है वहाँ पर, खायरा है ना, खायरा खदीर वन, उसके बाजू में एक उमराव गाँव है, वहाँ पर भजन करते थे। तो उधर एक किशोरी कुंड है, उसके किनारे भजन करते थे। दो कहानी है इसकी। एक कहानी है कि किशोरी कुंड में भजन कर रहे थे तो अचानक किशोरी कुंड से ये दो विग्रह प्रकट हो गए, उनके हाथ में आए, उनके गोद में आए और अच्छा स्माइल दे दिया उनको और कहा कि आज से हम हमारे साथ आपके साथ रहेंगे, जो भी खिलाओगे उसको खाएंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता है, मैं दिन भर रोते रहता हूँ, जब कभी आती याद तो खा लेता हूँ। बोले कोई बात नहीं, जब भी तुमको खाने का मौका मिलेगा हमें भी खिला देना, हम भी खाएंगे आपके साथ घूमेंगे। एक कथा ऐसी है कि भजन कर रहे थे तो निर्जन वन में एक बालक आया और ये विग्रह उनको पकड़ाया और गायब हो गया, और विग्रह हंसे और बोले आज से हम आपके साथ रहेंगे। तभी भी बड़ा लुभावना स्वरूप था उनका, वो चब्बी चब्बी आपने दिखाया ना, मैंने वो दिखाया ना, मैं आपको देखो आगे दिखा दिया, ये कोई ये राधा विनोद जी है, बहुत एकदम स्माइलिंग एंड वेरी चब्बी लॉर्ड, एकदम वेरी ब्यूटीफुल। तो उन्होंने ना एक झोली बनाई, झोली, और गले में वो झोली में रखते हुए उनको घूमते थे वो। और फिर उसके बाद में फिर ये मंदिर में आए लोकनाथ जी महाराज, और यहाँ पर उन्होंने शरीर त्याग दिया, इसलिए ये मूर्ति यहाँ पर है। लेकिन वो यहाँ की मूर्ति एक प्रतिबिंब मूर्ति है और ओरिजिनल मूर्ति अभी जयपुर में है। उसके बाजू में जो है ना वो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर खेतुड़ी ग्राम के हैं और वहाँ से संत बने। वो राजपुत्र थे लेकिन वो नहीं बने राजपुत्र, मतलब राजा नहीं बने, तो उनके छोटे भाई संतोष दत्त वो राजा बने, छोटे भाई, और ये विरक्त होकर चले गए महाप्रभु के प्रेम में। दोबारा संत बन के जब लौटे ना गांव में, तो गांव में एक गोदाम था, उधर वो गोदाम के अंदर कोई जाता नहीं था, बहुत सर्प फुस फुस करते थे और सब डरते थे, कोई इसके अंदर बहुत भयंकर, कोई प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये जैसे ही गए ना उसके अंदर, तो सारे सांप चुपचाप आवाज भी है कि ना अपने आप बाहर निकल गए। वो राइस का गोदाम था, क्यों था वो सब सांप वहां पर? वो सांप सब मिलकर वहां पर पांच विग्रह थे, उनका रक्षण करते थे, इसलिए किसी को आने देते नहीं थे, योग्य व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। योग्य व्यक्ति आया, सांप निकल गए, और वो गोदाम से पांच विग्रह उन्होंने प्राप्त किए, उसमें से एक विग्रह ये है। और संतोष दत्त के साथ में उन्होंने बोट से जमुना जी के माध्यम से वृंदावन भेज दिया। और एक विग्रह है राधा ब्रजमोहन, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, उनके भी मंदिर है वृंदावन में, और बाकी के तीन कई और जगह पर हैं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का विग्रह नरोत्तम दास द्वारा पूजित इस मंदिर में विराजमान है। और जो छोटे ठाकुर जी है ना, देखो आगे दिखाता हूँ आपको, उनका भी दर्शन होगा आपको। आ गए छोटे ठाकुर जी, अरे ओके, नहीं नहीं है शायद। तो वो ठाकुर जी छोटे जो है वो गोकुल आनंद जी है, और वो विनोद मंजरी के अवतार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विग्रह हैं, उनके द्वारा पूजित हैं। और मैंने आपको ये शिला के बारे में बता दिया। अभी लोकनाथ गोस्वामी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर जी को इन्होंने उमरा गांव में दीक्षा दिया। बहुत लंबी कहानी है उसकी, वो तो दीक्षा देने के मूड में नहीं थे, वो बाबा जी के मूड में थे, भजन कर रहे थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न देकर आदेश दिया था कि वृंदावन चले जाओ और लोकनाथ जी महाराज जी कस्तूरी मंजरी के अवतार, उनसे आप दीक्षा ले लो। तो बहुत देर तक मना करते रहे। उसके बाद में फिर एक बार नरोत्तम जी उनका विष्ठा जो मलमूत्र त्यागते ना वो जगह साफ करते थे रात को, तो एक छुपे झाड़ी में देखा कौन करता है साफ। तो राजपुत्र नरोत्तम अपने हाथ से आंखों में आंसू लेकर मलमूत्र की जगह साफ कर रहा है, नया पानी रख रहा है, जाके गले लगाए क्यों कर रहे हो ऐसे, तुम तो राजपुत्र हो। नहीं नहीं मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। नहीं नहीं आप राजपुत्र हो, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, मैं आपके दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ, आप किसी और गुरु को ढूंढो। तो वो कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर जब ये देखा ना कि वो साफ कर रहे हैं, तो पहले से ही विनती कर रहे, पहले बोले कि 1 करोड़ जप करके आओ, तो वो करके आए, फिर भी मना कर दिया। बाद में बोले आपको नहीं दूंगा आप राजपुत्र हो, फिर भी मना कर दिया। फिर जब ये देखा ना स्थिति, तो गले लगाया और उधर ही दीक्षा दे दिया उनको। लेकिन कहा कि तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैं उस मानसिक स्थिति में नहीं हूँ, मुझे रोना ही आता है हमेशा, मैं विरह में हूँ, आप जीव गोस्वामी के पास चले जाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन आए, और वृंदावन जब आए ना तो पूछते पूछते आइए कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है। तो जब गोविंद जी मंदिर में गए ना तो बेहोश हो गए नरोत्तम दास ठाकुर भाव से। तो जीव गोस्वामी वहाँ पर वृंदावन में थे, उनको खबर मिली कोई लड़का आया है, बेहोश हो गया भाव में, तो भाग के गए और गोद में उठा लिया उसको और होश में लाया उसको, और फिर उसको लेकर अपने मंदिर में लेके आए। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी महाराज, तो लोकनाथ गोस्वामी महाराज की समाधि यहाँ पर है, मूल समाधि। आगे देखिए, ये समाधि के अंदर का दृश्य है, यहाँ पर लोकनाथ जी महाराज का शरीर रखा गया है, समाधि को समाधि संस्कार किया गया है। ये मंदिर में दो हिस्से हैं, एक तो बहुत सारे विग्रह एक एक जगह पर मंदिर में हैं, एक हिस्से में पूरी समाधियां हैं बड़े बड़े लोगों की। देखो एक पहली समाधि, मेन समाधि जो है वो लोकनाथ जी महाराज की है। अभी आके देखेंगे ना आप, ये पहले ओपन एयर था और इसमें बहुत सारे बंदर आकर बहुत उदम मचाते थे, किसी को भजन करने देते नहीं थे, विदेशी देशी लोगों के पर्स निकाल कर नोट फाड़ देते थे उनके आंखों के सामने, क्या क्या करते थे, चश्मा तो उतारते ही थे। तो फिर वो हमारे मित्र हैं वहाँ पर पुजारी थे उस समय, उन्होंने हमको विनती किया, तो हमने राधा गोपीनाथ के भक्तों को मिलकर, हाँ बहुत पुरानी बात है ये, 15 साल पुरानी बात है, ये छत बना दिया पूरा। निताई प्रभु वहाँ के पुजारी थे उस समय, तो उनके इच्छा से हमने राधा गोपीनाथ के मंदिर को लोगों को भक्तों को इकट्ठा करके प्रेमीजनों को, ये उस समय अभी आज तो पता नहीं कितना कीमत होगा, उसमें 2.5 लाख लगे थे, और ये छत बना दिया पूरा, कॉर्डन कर दिया, अभी भक्त यहाँ पर आकर बैठ कर आराम से भजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा है ना, ये बोर्ड, इस बोर्ड पे राधानाथ स्वामी का नाम लिखा हुआ है कि इनके भक्तों के द्वारा ये छत बनाया गया। उसके बाद में ये प्रांगण में जितनी समाधियाँ हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, ये है नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो दिखा ना कोई फोटो में क्या दिखा है, गोदाम से महाप्रभु का विग्रह नागों के बीच में से निकाल के लेके आए, और ये जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है। अभी बहुत विचित्र बात है, नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना वो कैसे उनका तिरोभाव हो गया, वो पद्मा नदी में गए और शिष्यों को कहा उन्होंने कि जल डालो मेरे ऊपर, और शिष्य डालते गए जल, जैसे ही जल डालते गए ना वो पिघलते गए, उनका शरीर जो है ना वो ऐसे एज इफ मट्टी कैसी होती है पिघलते गए, और आखिर में वो शरीर अदृश्य हो गया। इस तरह से उन्होंने तिरुभाव हो गया उनका, कैसे वो धाम पधारे। तो लोगों ने कहा अभी गुरु महाराज सामने आंखों के सामने जा रहे हैं, एक तरह से अदृश्य हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां की जो मट्टी थी ना जहाँ खड़े थे वो मट्टी लाई और इस जगह पर समाधि दिया उसको। तो ये समाधि उनके शरीर की नहीं है, लेकिन वहां की जो मट्टी है नदी के अंदर की, उसको यहाँ पर उन्होंने समाधि संस्कार किया है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर उनका, वो मट्टी रखी गई दिव्य मट्टी। ये है गंगा नारायण चक्रवर्ती समाधि, उसके बाजू में है ये। ये भी बड़े पंडित थे, और नरोत्तम ठाकुर जी ने उनको एक बार ऐसा लीला किया कि बड़े प्रभावित हो गए वो, और फिर वो उनके अनुयायी बने, उनकी भी समाधि यहाँ पर है। बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं इनकी, इन्होंने आगे जाकर गंगा नारायण जी ने और शिष्यों ने मिलकर क्या किया, एक रूप नारायण थे, बहुत घमंडी शास्त्रज्ञ थे, पंडित थे, वाद विवाद करते थे और लोगों को डिफीट करते थे। तो गंगा नारायण जी ने अपने दो शिष्यों को वहां भेजा पान वाला बेचने के लिए, पान सुपारी बेचने के लिए। और वो जब आए ना उधर रास्ता से, तो पान सुपारी वालों ने संस्कृत में बातचीत करके उनको वहीं परास्त कर दिया। और वो नरोत्तम दास ठाकुर को परास्त करने के लिए आने वाले थे, तो उन्होंने पूछा जब वो प्रभावित हो गए तुम कौन हो, तो कहते कि हम गंगा नारायण जी और नरोत्तम दास ठाकुर के अनुयायी हैं। तो वो ये पान वाले, इनके अनुयायी इतने पावरफुल हैं, तो वहीं से भाग गया रूप नारायण, वो विवाद करने के लिए आए नहीं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी। ये है वृंदावन, सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की समाधि। उनके विग्रह भी गोकुलानंद जी है, इसी मंदिर में है। और इनकी भी बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। हमारी मदन मंजरी जो है ना, हमारी संचालिका, वो एक नाटिका में विनोद मंजरी बनी थी। वो कुसुम सरोवर के पास में इनको मारने के लिए लोग आए थे डाकू। उस समय अंधेरे में बहुत घना जंगल हुआ करता था परिक्रमा में, तो घने जंगल में इनको वध करने का उनका प्लान था। लेकिन जैसे ही कुसुम सरोवर के जंगल में घुसे परिक्रमा करते करते, तो चक्रवर्ती पास गायब हो गए और विनोद मंजरी वहाँ प्रकट हो गई, फूल बिन रही है। तो डाकू लोग उनको ही पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ गए, वो अभी तक घूम रहे थे। बोल पता नहीं मुझे, मैं तो फूल बिन रही हूँ। फिर वो बहुत अचंभित हो गए कि अभी तो अंदर घुसे थे वन में, कहाँ चले गए। तो कुछ देर बाद में वही कन्या उनके आंखों के सामने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन गई। तब वो सारे मारने वाले चरणों में गिर गए, मैं माफ करना महाराज जी, हम आपको समझे नहीं। इस तरह से शिष्य बन गए उनके। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी है सारार्थ दर्शिनी, और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी गौड़ीय संप्रदाय में प्रमाणित माने गए हैं। कृष्ण भावनामृत वाक्य, श्री कृष्ण भावनामृत वाक्य, ऐसे 10-15 बड़े बड़े क्या कहते हैं ना, बहुत उच्च दर्जे के ग्रंथ हैं इनके, जो आज भी गौड़ीय संप्रदाय में प्रमाण माने जाते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर निवास किया इस जगह पर, और उनकी समाधि भी यहाँ पर है। आप, मेरी उम्मीद है कि जैसे बताते जा रहे हो आप सब प्रणाम करते जा रहे हैं। हाँ, सब लोग आपको हर एक समाधि में प्रणाम करना है। लोकनाथ जी महाराज देखो वापस करेंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो लोकनाथ जी महाराज की समाधि में पहले प्रणाम करो, ये तो आपकी जगह है, आपने लोगों ने बनाई हुई है, प्रणाम कीजिए इसको। उसके बाद में बाहर आएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि को प्रणाम कीजिए। उसके बाद में आप गंगा नारायण चक्रवर्ती पाद की समाधि में प्रणाम कीजिए। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज के समाधि में प्रणाम कीजिए। और उसके बाद में हम वहाँ से बाहर निकलेंगे और सातवें मंदिर में आएंगे। अभी गौड़ियों के सातवें सप्त देवालय में आखिरी मंदिर में आएंगे। यह है राधा गोपीनाथ जी का मंदिर। ये आपके लिए, उसको गोकुलानंद से दोबारा लौट के आना पड़ेगा, राधा रमन को वापस क्रॉस करते हुए लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। और वहाँ पर लेफ्ट टर्न में हमारे पद्मलोचन गोस्वामी महाराज का गेस्ट हाउस है, उसके आगे जाना पड़ेगा। उसमें वृंदावन का फिल्मी थिएटर है, सिनेमा थिएटर, उसके आगे जाना पड़ेगा। फिर लेफ्ट में आपको बड़ा मंदिर मिलेगा संगमरमर का, वो है राधा गोपीनाथ मंदिर। देखिए हमारी नर्तकी माता जी और मैथिली माता जी यहाँ पर तमाल वृक्ष को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। आप भी इस पेड़ को गले लगाना, प्रणाम करना, कल्प वृक्ष है। और चलो आगे बढ़ते हैं, मंदिर के आगे जाएंगे और अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। अभी मंदिर के अंदर बहुत अंदर बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह। अभी पहले आपको गोपीनाथ की प्रकट की कहानी सुनाते हैं। देखो गदाधर पंडित जो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे, ऐसी सेवा करते थे ना कि ठाकुर जी उनके प्रेम से ऐसे रीझ गए, तो बुढ़ापे में ना उनको कुबड़ी आ गई पीठ पे, तो ठाकुर जी बैठ गए पलटी मार के। आज भी बैठे हुए हैं, पूरे विश्व में एक ही बैठा हुआ कृष्ण का विग्रह है, क्योंकि गदाधर पंडित ना खड़े नहीं हो पाते थे, इतना पीठ में उनको बुढ़ापे का परिणाम था। तो अपने गुरु के ऐसे भावपूर्ण सेवा को देख के उनके शिष्य कौन, मधु पंडित, बड़े प्रभावित थे, उनको भी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा थी। तो वृंदावन आए वो, उनको सबने बताया कि कृष्ण को ढूंढना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा। तो वृंदावन आए, इतने भाव में थे, सब लोग ध्यान से सुनो, वो ना कोथाए कृष्णा करके पुकारते थे पागलों की तरह, और ढूंढते थे कृष्ण को। तो कभी उनको देखते थे कि अरे डाली पर बैठ के बंसी बजा रहा है, बंसी से बात कर रहा है, और पास जाते तो अदृश्य हो जाते थे। हाँ, उसके जाके कभी यमुना में दिखते थे, यमुना में तो गायब हो जाते थे कृष्ण, तो कहाँ कहाँ मधु पंडित बेहोश होते थे उनको देखकर, और फिर उनको ना पाने के बाद और दुखी होते थे, रोते थे। तो फिर उन्हें ढूंढना छोड़ दिया और पूछना आरंभ किया, कोथा है कृष्णा, कहीं देखा है कृष्ण को? तो लोग भी बेचारे क्या कहेंगे, बोले ये मंदिर में जाओ, वो मंदिर में जाओ, उनका समाधान नहीं होता था, संतुष्ट नहीं होता था। ऐसे ही ना एक दिन वो बंसीवट के किनारे पे एक मट्टी के ढलान पर बैठे थे। एक जगह लिखा है कि वो ऐसे चलते 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 ऐसे कोठा है कृष्णा कथा करते करते जमुना जी के अंदर चले गए, वो ऐसे चलते ही गए और गिर गए। उस समय जमुना जी ऐसे नहीं थी घुटने तक, बहुत गहरे समुद्र की तरह उनकी रैले चलती थी उस समय, बहुत गहरे और बहुत विशाल पात्र था उनका। तो जब वो गिर गए ना, एक जगह लिखा है कि ढलान में बैठ के ध्यान कर रहे थे, ढलान ही जमुना जी के प्रवाह से वो क्या कहते ना फिसल गई, होता ना कभी एक मट्टी का ढलान जल के प्रवाह से वो टूट जाती है और गिर जाती है, तो गिर गई वो। और ये सीधे भाव अवस्था में बेहोश जैसे भाव अवस्था थी ना, वैसे जल के अंदर डूबने लगे। तो ठाकुर जी गोपीनाथ के रूप में जमुना जी के अंदर जल में प्रकट हो गए और उन्होंने मधु पंडित को पकड़ा और उसको हाथ में बालक की तरह लेकर किनारे पे आए और किनारे पे होश पे लाया उनको। तो मधु पंडित बहुत भाव में करे, चमत्कार हो गया आज, कभी जमुना जी के बाहर दिखते हो तो आप जमुना जी के अंदर प्रकट हो गए, हाँ अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए। तो ये देखिए मधु पंडित जी यहाँ पर खड़े हैं और गोपीनाथ जी उनके बाजू में खड़े हैं। तो गोपीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि ऐसे ही मेरे आंखों के सामने बने रहो। तो उनके आंखों के सामने ये प्रत्यक्ष भगवान थे ना, वो विग्रह बन गए, ये बिकेम अ डीटी। और कहते हैं कि 40 साल तक बंसीवट पे झोपड़ी में उन्होंने इनकी सेवा की, 40 years। उसके बाद में 1589 में वो राजा रायसल शेखावत राजस्थान से आया, उसने लाल पत्थर में मंदिर बनाया, वो जो आपके सामने में दिखा है ना, देखिए ये मंदिर जो है ना वो राजा रायसल शेखावत ने बनाया 1579 में। और ये जो विग्रह है ये इस रूप में यहाँ पर प्रकट है आपके सामने, देखिए आज ये विग्रह तो जयपुर में है, लेकिन ये वो यही जो मूर्ति है ये मधु पंडित के आंखों के सामने कृष्ण भगवान गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे, वही विग्रह रूप बने, यही विग्रह है वो। ध्यान से देखिए इनकी भी आंखें लाल हैं जगन्नाथ की तरह, बहुत सुंदर विग्रह। हम लोग जयपुर की यात्रा में 2016 में गए थे, उधर गोविंद जी गोपीनाथ जी सबका दर्शन किया, विनोद जी का दर्शन किया, दामोदर जी का दर्शन किया, बहुत सुंदर। तो उसके बाद में मुसलमानों का अटैक हुआ, उसके बाद में गोपीनाथ जी को काम्यवन लेके गए, पहले हॉल्ट किया राधा कुंड में, वहाँ पर काम्यवन गए। काम्यवन जाएंगे ना आप तो काम्यवन में बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर है, वहाँ पर वो 28 साल रुके। और बंगाल के वर्धमान जिले के राजा त्रिलोक चंद और रानी भानुमती इन्होंने मिलकर ये भव्य मंदिर बनाया और काम्यवन में गोपीनाथ जी 28 साल रहे। उसके बाद में वहाँ पर भी मुसलमानों का आतंक पहुँच गया, तो वहाँ से फिर वो जयपुर चले गए। और आपको जानकर खुशी होगी वृंदावन काम्यवन और जयपुर के अलावा राजस्थान में 7 और गोपीनाथ जी के मंदिर हैं, हरे कृष्णा। और अभी फिलहाल वृंदावन में ये मूर्ति वहाँ पर रखी गई है, ये जयपुर में है जो आपके सामने है देखिए, और ये जो विग्रह हैं ये वृंदावन में हैं। अब इसकी एक अद्भुत कहानी है, बीच में गोपीनाथ जी हैं, लेफ्ट में जहाँ राधा रानी होनी चाहिए, अभी आपको पहले वो दिखाता हूँ, वो वाली मूर्ति देखिए, हाँ ये वाली मूर्ति देखिए, ये तो ओरिजिनल मूर्ति है ना, ये जो छोटी वाली मूर्ति है ये राइट में रखी गई है, ये राधा रानी है, हमेशा कहाँ रहती है, लेफ्ट में रहती है। ये जो बड़ी वाली मूर्ति है ये जाननामा देवी है, अनंग मंजरी। अब इसकी कथा ऐसी है कि वो जाननामा देवी नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, वो रेवती का अवतार थी, और रेवती जी जाननामा देवी बनकर आई और चैतन्य महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु पधार गए, उसके बाद वो गौड़ियों की नेता बनी, हाँ मतलब लीडर बनी, जीव गोस्वामी उनके ही नेतृत्व में काम करते थे। तो वृंदावन आई एक समय बीच में, एक समय एक चक्र भी गई थी, वहाँ से वृंदावन आई और बहुत दिन तक वृंदावन में रही। वो कहते जाननामा देवी ने ना मदन मोहन जी के मंदिर में कुछ निवास किया, उनके लिए कई दिन तक 56 भोग बनाए, सब वैष्णवों को भोजन कराया, फिर गोविंद जी में कुछ दिन रही, वहां पर 56 भोग लगाया, लेकिन उनका निवास गोपीनाथ में था। आकर वो वहां पर सेवा करती थी, हजारों वैष्णवों को अपने हाथ से भोजन करा करती थी। जिनको देखती थी ना, वो केवल दृष्टिपात होने से भाव विभोर को रोया करते थे, बेहोश होते थे रस्ता में, ऐसा उनका चमत्कार लिखा है भक्ति रत्नाकर में। तो उनका विशेष जो आकर्षण था वो गोपीनाथ जी के पास था। तो गोपीनाथ जी उनके पास जो राधा रानी थी वो ये छोटी आकार की थी, तो उनको लगा कि उन्नत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो गोपीनाथ के साइज की से अच्छी दिखेगी। तो उन्होंने फिर व्यवस्था की और बड़ी मूर्ति लेके आई, लेकिन बड़ी मूर्ति लेके आने के बाद में वो खुद उस मूर्ति में प्रवेश किया उन्होंने अनंग मंजरी के भाव से, और पुजारी को आदेश दिया इसको राधा रानी की जगह पर रखो, राधा रानी को दाहिने हाथ में रखो। तो उन्होंने विरोध किया, ऐसा कभी होता है क्या? जिसका अभी जीवन बाकी है, जीवन अभी चल रहा है, उनकी कभी विग्रह की पूजा नहीं होती है। उसी रात को फिर हल्ला मच गया वृंदावन में, बहुत सारा बहस हो गई कि ऐसे कैसे ये माता जी क्या बोल रही है। लेकिन रात में गोपीनाथ जी स्वयं स्वप्न में आए, राधा रानी स्वयं स्वप्न में आई, उन्होंने पुजारी को आदेश दिया कि ये विग्रह राधा रानी की जगह पर रखो और राइट साइड में मुझे रखो, ऐसे आदेश दिया। फिर वो सब लोग नतमस्तक हो गए उनके, और ऐसी एक ही वो भक्त हैं पूरे अपने इतिहास में जिनके जीवन काल में उनके विग्रहों को ठाकुर जी के साथ रखा गया और उनका पूजन किया गया। देखो, इज ओनली पर्सन इन द होल यूनिवर्स, होल क्रिएशन, इन हर लाइफ इट सेल्फ हर डिटी वॉज बींग वर्शिप्ड अलॉन्ग विद गोपीनाथ जी ऑन द ऑल्टर ऑफ गोपीनाथ जी। देखो, तो आज के तारीख में वहां पर देखो कितने विग्रह हैं, आप देख रहे हैं ना, 5 विग्रह हैं। कौन कौन है? गोपीनाथ जी के लेफ्ट में अनंग मंजरी खड़ी है यानी जानवा देवी, राइट में राधा रानी है, और राधा रानी छोटी, उसके बाजू में ललिता है, राधा रानी के बाजू में ललिता है, मैं आपको दिखाता हूँ एरो यहाँ पर, ये ललिता है, ये राधा रानी है, ये गोपीनाथ जी है, ये अनंग मंजरी जानवा देवी है, और ये विश्वेश्वरी देवी, इस प्रकार के 4 देवियां और गोपीनाथ जी बीच में विराजमान है। कहते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने वही निवास किया और आखिर में अपने ही विग्रह में विलीन हो गई वो, जिस प्रकार से अंतर्दान हो गई इसमें प्रवेश कर दिया उन्होंने, इसलिए कोई समाधि नहीं उनकी, खाली बैठक है राधा रानी के राधा कुंड पे, समाधि कोई नहीं उनकी क्योंकि मूर्ति में विलीन हो गए। चैतन्य महाप्रभु की समाधि क्यों नहीं है? क्योंकि गोपीनाथ जी के जंगा में प्रकट प्रवेश कर दिया उन्होंने। तो ये आज के तारीख में ये प्रतिभू मूर्ति वहाँ पर स्थापन की गई है, बीच में हमारे गोपीनाथ जी खड़े, उनके राइट में जो बड़ी बड़ी बेनियाँ पहनकर राधा रानी खड़ी है, और यहाँ पर एक बेनी पहनकर जानवा देवी खड़ी है। आप प्रणाम कर रहे हैं ना सब लोगों को, श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनर गोपीर गोपीनाथ श्री सुनहा। जो गोपियों को बंसी बट पे बैठकर मुरली बजाकर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी मुरली के धुन सबको आकर्षित कर लेते हैं। अभी एक सिद्धांत की बात को आपको बताना जरूरी है। मदन मोहन जी का दर्शन किया हमने, मदन मोहन जी संबंध आचार्य हैं। जयताम सरतौ पंगोर मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनौ। तो दुनिया के आसक्ति से छुड़ाकर अपने चरणों से संबंध देते हैं वो। पर भी आप आएंगे आगे गोविंद जी के मंदिर में, और यहाँ पहले गोपीनाथ को दर्शन कर लेते हैं। गोपीनाथ जी जो है वक्षस्थल है भगवान का, जो वज्रधाम ने मूर्ति बनाई थी, गोपीनाथ जी वक्षस्थल हैं, और ये प्रयोजन भगवान हैं, ये सेवा की परिपूर्णता देते हैं, और जब सेवा की परिपूर्णता इनके कृपा से प्राप्त होती है तो इनकी मुरली सुनाई पड़ती है। कभी तो सुनेंगे हम चरणों के नूपुर, कभी तो सुनेंगे मुरली मनोहर, कभी तो बजाएंगे मुरली मनोहर, कभी तो बजाएंगे मुरली मनोहर। हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे, हुआ भाग्य मुरली की तान सुना करेंगे। तो ये जब हम हमारे जीवन के भक्ति मार्ग में सेवा में परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो इनकी मुरली की तान सुनाई पड़ती है, मतलब इनकी मुरली की तान निरंतर बज रही है गोपीनाथ जी की, लेकिन हमारे काम वासना के वश में होने की वजह से सुनाई नहीं पड़ रही है। जब वो काम वासना नष्ट हो जाएगी, हृदय शुद्ध होगा, सेवा परिपूर्णता होगी, तो इनकी मुरली की तान सुनाई पड़ेगी। यानी कि जब अंदर का शोर शांत हो जाएगा तो बाहर की पुकार जो है इनकी सुनाई पड़ेगी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आपकी सेवा जो है उसमें हमको परिपूर्णता दीजिए, और जल्द ही आपकी मुरली की तान सुनकर, आपकी पुकार सुनकर हम आपके पास दौड़े आएंगे। यही हमारी आपकी चरणों में प्रार्थना है। देखो इनके चरणों में ना एक शालिग्राम शिला है, देख लेना बड़ी अच्छी तरह से, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अब ये आपके नॉलेज के लिए, जो अभी भगवान के राइट में है राधा रानी, भगवान के लेफ्ट में अनंग मंजरी, और ये हमारे भगवान गोपीनाथ जी महाराज। एकदम निकट का दर्शन देखिए, बहुत सुंदर। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय हो। अलग श्रृंगार है ये राधा रानी का और जानवा देवी का, वो भी देख लीजिए। और ये शिला उनके चरणों में थी, गोपीनाथ जी के चरणों में। गिरिराज शिला है ये, शालिग्राम शिला नहीं है, ये गलत लिखा है मैंने, ये गिरिराज शिला है। और फिर उसी मंदिर में मधु पंडित के समाधि मंदिर समाधि भी है। मधु पंडित जी कामेवन में नहीं गए थे, उनके देहांत होने के बाद भी ये आतंक हुआ, उसके बाद में मूर्ति कामेवन चली गई थी। फिर हम आएंगे सातवें मंदिर में, पहला वो छठवां मंदिर था, ये सातवां मंदिर है, वो है राधा गोविंद जी। जय राधा गोविंद राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन हे, श्रील रूप गोस्वामी प्राण धन हे। जय राधा गोविंद राधे। एक सेकेंड रुकिए, मैं जलपान करता हूँ। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी रूप गोस्वामी मंदिर वृंदावन आए और सनातन गोस्वामी वृंदावन आए। सनातन जी को सबसे पहले मदन मोहन जी के विग्रह प्राप्त हुए। अब रूप गोस्वामी भी वृंदावन में भजन कर रहे थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने सभी गोस्वामियों को, खास करके रूप सनातन जी को आदेश दिया था कि आपको विग्रह स्थापन करना है, शास्त्र लिखने हैं, सिद्धांत लिखने हैं और प्रचार करना है। तो सब लोगों ने ग्रंथ लिखे। कैमरा बंद है? हाँ ठीक है, ओके। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और सभी गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, अपने अपने विग्रह स्थापन किए। तो रूप गोस्वामी गोविंद जी भगवान के विग्रह के खोज में थे। सबको पता था कि बज्रनाथ जी ने मदन मोहन जी बनाए, गोविंद जी बनाए, गोपीनाथ जी बनाए, तीन तो विग्रह उन्होंने बनाए थे। गोविंद जी को सब जगह ढूंढ रहे थे वृंदावन में, कहाँ लुप्त हुए कहाँ लुप्त हुए। बहुत चिंतन किया, बहुत भजन किया, योग पीठ पे बैठकर बहुत चिंतन किया, कहीं मिले नहीं। घर घर में जाके ब्रजवासियों को पूछा, आपके घर में है क्या, आपके घर में है क्या, आपके घर में है क्या। फिर उदास हो गए और ध्यान में बैठे और भगवान को पुकारने लगे, अभी मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, अभी आप ही अपने आप को प्रकट करो। उस समय एक बालक आया, बोला बाबा गुरु और कुर हो रहे हो आप? बोले मैं गोविंद जी की खोज में हूँ, बहुत दिनों से खोज में हूँ, सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिले। तूने कहा कि यहाँ पर ना एक चमत्कार होता है, ये टील पर ना एक गैया आती है और रोज अपना दूध छोड़ के चले जाती है। तो वो जो ग्वाल था ना ग्वाला, वो एक दिन आया तो वो हमेशा चरने को जाती है, शाम को दूध निकालते ना गाय का हमेशा चरने के बाद में, तो थन खाली रहते उसके, बिल्कुल दूध दही नहीं। एक दिन पीछे पीछे आया वो उसके और देखा तो सारा दूध वहाँ डाल रही है टील के ऊपर। तो उसको ऐसा मारने के लिए जाया तो गोस्वामी ने रोका उनको। रात में स्वप्न में आए, वो भी बालक स्वप्न में आया, उन्होंने कहा मैं ही गोविंद जी हूँ और मैं इस टील के अंदर दबा हूँ और वो गाय आके मुझे दूध पिला के चले जाती है, अभी मैं बहुत उष्ण हो गया हूँ, मुझे वहाँ से निकालो और मेरी सेवा करो। तो फिर रूप गोस्वामी बड़े आनंदित होकर ब्रजवासियों को अपने स्वप्न का वर्णन करते हैं और फिर वो गोविंद जी को प्रकट करते हैं, गोविंद जी महाराज को, और वहीं पर पेड़ के नीचे उनकी सेवा करना आरंभ करते हैं। उसके बाद में वो जो है ना पुरुषोत्तम जेना, वो राधा रानी का विग्रह उनके लिए भेज देते हैं जगन्नाथपुरी से। तो राधा रानी को आने के बाद राधा गोविंद जी बन जाते हैं। फिर एक बार ब्रह्मकुंड नाम की जगह, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ब्रह्मकुंड नाम की जगह पर रूप गोस्वामी को कौन मिले, वृंदा देवी का विग्रह मिला, वृंदा देवी का विग्रह प्राप्त हुआ। ओरिजिनल वृंदा देवी का विग्रह जो वज्रधाम ने बनाया था, जो गोविंद जी के साथ में था, वह विग्रह ब्रह्मकुंड के अंदर मिला उनको। उनको ज्ञान था कि वृंदा देवी गोविंद जी के साथ में है, तो फिर गोविंद जी के साथ में वृंदा देवी और राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में वो कहते हैं कि मान सिंह राजा जो अकबर का सेनापति था, वो इनका इनका नहीं था, रघुनाथ भट्ट जी का शिष्य था, क्योंकि रघुनाथ भट्ट जी ने भी गोविंद जी की बहुत सेवा की है विग्रहों की। वो रघुनाथ भट्ट थे ना, वो 6 रागों में श्रीमद् भागवतम गाया करते थे। उनका श्रीमद् भागवत का गायन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, वो गाते थे पूरा राग में उसको, अलग अलग धुन में, बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने कोई ग्रंथ वंत लिखा नहीं है, उनकी प्रसिद्धि यही है, गोविंद जी की सेवा और भागवत का गायन। और वो कहाँ गाते थे, आके दामोदर जी के मंदिर में आके गाते थे। तो उनका शिष्य था ये मान सिंह। तो मान सिंह ने आके पूछा कि हमें सेवा दो, तो उन्होंने कहा कि ये हम तो सन्यासी हैं, विरक्त हैं, आप गोविंद जी के लिए मंदिर बनाओ। तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। ये केवल 2 मंजिलें हैं, ये 7 मंजिलें थी ऐसी, कितने सारे कमरे थे उसके अंदर, कितने सारे कमरे थे, 7 मंजिल का मंदिर था। अंदर के इलाके में हर एक खंबे में लीलाओं का क्या कहते हैं उसको, स्कल्पचर बनाया था मूर्तिकार ने, वो बनाया था डायरमा, सब मूर्तियां हर एक खंबे पर लीला थी, किसी में गोवर्धन लीला है, किसी में मक्खन चोरी का लीला है, किसी में मैया बांध रही है, आज भी है, लेकिन सब वो मुसलमानों ने ठेच दिया पूरा उसको। यानी वैसे आप दर्शन कर लीजिए, इतना सुंदर मंदिर बनाया। ये गोविंद देव वृंदावन के राजा हैं, जैसे बांके बिहारी जी हैं। देखिए इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है आज भी, लेकिन इतने 400-500 साल के बाद भी इतना सुंदर है ये रेड सैंडस्टोन का मंदिर। ये केवल 2 मंजिल है, ध्यान रखना, एक नीचे की मंजिल है, एक ऊपर की मंजिल है, बस आगे देखते जाइए आप क्या झरोके बनाए हैं इसके। एक एक ये एक मंदिर है राइट साइड में, ये दूसरा, देखते जाइए, ये देखो झरोका कैसे बनाया है, कितनी सुंदर कला कुसर है। ये देखिए राधा गोविंद जी के, कितना भव्य मंदिर है ये, इतने बड़े इलाके में बनाया गया है। और ये तोता बैठे हुए हैं, कितने सारे तोता वहां पर रहते हैं। और ये है राधा गोविंद जी का विग्रह। अभी ये जयपुर में है, लेकिन ये पहले इस मंदिर में थे। उनके लेफ्ट में राधा रानी है और राइट में वृंदा देवी है, पीछे गाय भी है। और ये जो मंदिर है ना, ये जैसे मैंने आपको दिखाया ना, 2 तरफ 2 छोटे मंदिर भी है। देखिए ये एक मंदिर, छोटा मंदिर, ये देखिए ये राइट साइड में है, और आगे जाएंगे ना तो एक मंदिर, अरे एक मिनट, एक मंदिर लेफ्ट साइड में है, वो योग माया देवी का मंदिर है। ये योग माया देवी जो है ना, वो वृंदावन में रहकर कृष्ण के लीलाओं का संचालन करती है और सहायता करती है। तो ये मंदिर के अंदर योग माया का ड्यूटी है, वो आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, योग माया की ड्यूटीज है। और आज तो वो लोग दर्शन करते नहीं, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे और इंक्वायरी करेंगे ना, तो पुजारी आपके लिए खोलेंगे मंदिर उसको और दर्शन कराएंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, लोग जाते नहीं वहां पर। तो फिर क्या हुआ, गोविंद देव की मंदिर बना, तभी रूप गोस्वामी जब मंदिर बन रहा था तो वो जीव गोस्वामी के मंदिर में रहने गए, इसलिए रूप गोस्वामी की भजन कुटी और समाधि दोनों जीव गोस्वामी के मंदिर में हिस्टोरिकली। बीच में वो ब्रज का भ्रमण करने के लिए गए थे और टेर कदम्ब में उन्होंने निवास किया है, जहाँ पर अभी मैंने कथा बताई ना आपको गौचारण की, गोपाष्टमी की, वो टेर कदम्ब के स्थान पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी है, एकांत भजन उन्होंने वहाँ पर किया है और कई ग्रंथों का लेखन किया है। और वहीं पर राधा रानी का उनको दर्शन हुआ था, वो खीर बनाई थी राधा रानी ने और दोनों को खिलाई थी रूप सनातन जी को। तो योग माया का मंदिर है, उनको प्रणाम कीजिए। योग माया तो बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो जो महात्मा होते हैं वो योग माया के प्रभाव में रहते हैं, योग माया के निर्देश में उनका जीवन चलता है। जो भोगी होते हैं ना हमारे जैसे, वो महामाया के प्रभाव में रहते हैं, त्रिगुणात्मिका महामाया। तो आप प्रणाम कीजिए उनको, हमें भगवान को, भगवान की सेवा में रहने के लिए आप उनको आदेश दीजिए, विनती कीजिए कि वो अपने हम सबको भगवान की सेवा में रखें। और ये है, अभी जब ही गोविंद जी मुसलमानों को आक्रमण हुआ ना, कैसा आक्रमण हुआ? ऐसा हुआ कि आगरा में औरंगजेब अपने महल में खड़ा था छत पे, तो दूर उसको उसके महल से भी ऊंचा एक मशाल जलते हुए दिखाई पड़ी। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? बोलते हिंदुओं का मंदिर है, 7 मंजिल का, उसके शिखर पर ये मशाल जल रही है। तो बहुत उसको ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उसने आक्रमण किया कि तोड़ दो उसको। तो उसका आक्रमण होने के पहले गोविंद जी को ले गए। हमने पढ़ा है कि जब गोविंद जी को ले गए ना, तो मधु पंडित जी ने जो गोविंद जी को लेके जा रहे थे उनको गोपीनाथ जी की महाप्रसादी माला पहनाई थी रात के समय पे, हमने उसका ड्रामा भी किया था। तो गोविंद जी को लेके गए, राधा कुंड पे रखा कुछ समय के लिए, फिर कामा चले गए, कामा में रहे वो। और जब कामा से निकले आगे, तो उस समय वृंदा देवी ने कहा कि आप तो जगन्नाथ हो, मैं तो वृंदा देवी हूँ, वृंदावन की देवी हूँ, इसलिए वृंदा देवी वहीं रह गई ओरिजिनल, और गोविंद देव जयपुर चले गए। तो वो जब जयपुर चले गए, फिर ये मंदिर जो है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 मंजिल का मंदिर देख रहे ना, तो वो 5 मंजिल तोड़ दिए उसने, और अंदर घुसकर जितने भी विग्रह के जितने भी डायरमा थे वो सब तोड़ दिए, उनके मुंह को बेचिराग कर दिया। उसके बाद जब सब थम गया, शांति हो गई, तो ये विग्रह उन पे मंदिर में भी विराजमान है। आज के तारीख में आप जाएंगे बड़े मंदिर में, तो बड़े मंदिर में आपको ये विग्रह मिलेंगे, कृष्ण बीच में है, गौर निताई बाजू में है। और ये मंदिर एक तरह से सेवा में नहीं था, तो उसके पीछे जहाँ ये एक्चुअल योगपीठ है, जहाँ पर एक्चुअली गोपीनाथ गोविंद जी का आविर्भाव हुआ था, जहाँ प्रकट हुए थे गोविंद जी स्टील के अंदर, अभी भी आप चढ़ना पड़ता है आपको, थोड़ा सा थोड़ा ऊंचाई में है मंदिर। तो पीछे जहाँ पर एक्चुअल गोविंद जी प्रकट हुए थे, वहाँ पर एक नया मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर राधा गोविंद जी का विग्रह की सेवा भी चल रही है। राधा गोविंद जी, तुलसी देवी का प्रतिबिंब मूर्ति, उनकी पूरी सेवा पीछे चलती है। बहुत सुंदर मंदिर है, ऐसा ही मंदिर बनाया है, लेकिन छोटा है ये, तो बहुत विशाल और भव्य है। लेकिन सामने वाले मंदिर में ये विग्रह है, उनका दर्शन कर लीजिए। और इस मंदिर में गोविंद जी की शालिग्राम शिला है, ये शिला आपके सामने प्रस्तुत है। ये बहुत दुर्लभ दर्शन है, आप कभी आपको जाएंगे तो आप पता रहेगा तो आप पूछेंगे कि वो दिखाओ कहाँ पर है। तो ये गिरिराज की शिला है, मैंने गिरिराज की बताई ना शिला आपको, तो ये गिरिराज जी की शिला है गोविंद जी मंदिर की, बहुत बड़ी और विशाल और अद्भुत शिला है ये। ओके, तो राधा गोविंद जी के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि राधा गोविंद जी का विग्रह जब बज्रनाम ने बनाया तो उत्तरा देवी को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इनका मुख कमल जो है वो साक्षात कृष्ण जैसा है। तो गोविंद जी हमें मदन मोहन जी के संबंध देने के पश्चात गोविंद जी हमको सबको सेवा में लगाते हैं। गोविंद जी की कृपा से हमें कृष्ण की सेवा मिलती है गुरु जी के माध्यम से, और वो सेवा प्राप्त होती रहती है अलग अलग विविध प्रकार की, और फिर सेवा में परिपूर्णता जो है वो गोपीनाथ जी देते हैं। इसलिए हमारा संप्रदाय कैसा है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये सबको पता होना चाहिए। जो भी गौड़ी संप्रदाय में सम्मिलित है या अनुग्रह लेना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिद्धांत क्या है। तो संबंध का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन जी गोस्वामी महाराज को वाराणसी में 2 महीने के लिए दिया। अभिधेय का ज्ञान रूप गोस्वामी को दश अश्वमेध घाट त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में 9 दिन के लिए दिया, और उनका जो ज्ञान दिया गया ना वो बाद में उनके ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गया। सनातन जी का बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत और हरि भक्ति विलास, ऐसे दिव्य ग्रंथों में वो संबंध ज्ञान प्रकट हो गया। रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, दान केली, कौमुदी, इस प्रकार के ग्रंथों से उनका अभिधेय ज्ञान प्रकट हो गया। सेवा का ज्ञान, संबंध का ज्ञान, मतलब संबंध के बाद निर्माण की हुई सेवा। और जो प्रयोजन ज्ञान है वो भगवान ने रामानंद राय को दिया। कहाँ पर? कोवूर में, गोदावरी के तट पर, साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। और वो ज्ञान जो है फिर रघुनाथ दास जी ने उसको प्रकाशित किया। रघुनाथ दास जी को प्रयोजन आचार्य कहा गया है। तो ऐसा हमारा सिद्धांत है, हमारा संप्रदाय का इतिहास है। तो आप दर्शन कीजिए बड़े प्रेम से और प्रार्थना कीजिए कि हम हमारे संप्रदाय के सिद्धांत को पूरी तरह समझें और ठीक से अपने आप को सेवा में लगाएं और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। और गोविंद देव का मुख कमल जो है, एक बार दिखाता हूँ फिर से आपको, देखिए गोविंद जी को ठीक से देखिए आप, इनका मुख कमल साक्षात कृष्ण जैसा है। अभी जब जयपुर पहुँचे ना ये, तो जयपुर के राजा जयसिंह जो थे ना, उन्होंने तो अपना शहर बनाया इनके अराउंड, मतलब अपने शहर के केंद्र स्थान में रखा है इनको। आज भी 7 दरवाजे हैं चार दिशा में, 28 दरवाजे हैं, बोलो, एक दिशा में 7 दरवाजे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, टोटल 28 गेट्स आ गए। पहला गेट ऐसा है कि उसमें हाथी जा सकता है, हमारी डबल डेकर बस जा सकती है। ऐसा था कि हाथी बैठे हुए लोग भी जा सकते हैं, घुड़सवार जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। और ऐसे ठाकुर जी हैं ये गोविंद जी कि मंगला में 2000 लोग रहते हैं, कोई ऐसे हरे कृष्ण का डिवोटी नहीं है, लोकल लोग हैं। ऐसा कल्चर बनाया जयसिंह ने कि आम रहवासी जयपुर के वैष्णव बने। शाम को 5000 लोग रहते हैं संध्या आरती में, कुछ सीजन की आवश्यकता नहीं कि जन्माष्टमी है क्या और कोई उत्सव है। आम तौर पे लोग अपना मोटरसाइकिल, पैदल, स्कूटर, गाड़ी, कार, बस सब मिलकर अंदर प्रवेश करते हैं, एक जगह पर भी उतर जाते हैं और चल के अंदर जाते हैं। बहुत विशाल और भव्य मंदिर है, बहुत विशाल, देखने लायक है, जाना चाहिए ज़रूर। एनीवेज, गुरु महाराज की कृपा से हमने सब दर्शन कर लिया है। अभी हम 7 मंदिरों का थोड़ा रिविजन करेंगे। पहला मदन मोहन जी का मंदिर, फिर गोविंद जी का मंदिर, फिर गोपीनाथ जी का मंदिर, दामोदर जी का मंदिर, श्याम सुंदर जी का मंदिर हमने सब देख लिया ना, फिर गोकुलानंद जी का मंदिर और राधा रमन का मंदिर। ये हमारे गौड़ी संप्रदाय के सप्त देवालय हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और हमारे ये भाग्य रहा है कि ये सप्त देवालय के जो प्रमुख आचार्य थे ना सप्त देवालय के, उनका नाम था प्राण गोपाल आचार्य, भगवान की जैसे हमारा उनका परिचय था। वो सातों देवालयों के प्रमुख पुरोहित थे प्राण गोपाल आचार्य, उनका मंदिर भी आपको दिखाएंगे आगे। और उन्होंने हमारे राधानाथ महाराज जी के माता का 80 संस्कार यमुना जी में किसी घाट पे किया था, और भगवान की दया से हम भी उनके साथ में थे उस समय जब गुरु महाराज ने अपनी माता जी का 80 विसर्जन, एक हिस्सा यमुना जी में और दूसरा हिस्सा मायापुर में जन निवास प्रभु के निर्देश में किया। एनीवेज, तो अभी हम इसके आगे, आज के इसके आगे जितने भी कथा करेंगे ना, वो ऐसे अद्भुत स्थानों में जाएंगे जहाँ पर कोई जाता नहीं है जनरली। अब ये स्थान कौन सा है? राधा बंसी गोपाल मंदिर। श्रील प्रभुपाद जब संन्यास लेकर वृंदावन में आए ना, तो सबसे पहले 5 रुपये महीना किराया देकर इस जगह पर रहे। ये बिल्कुल केशी घाट है ना, उसमें वो जमुना जी का मंदिर है ना, उसके बिल्कुल पास में है। आप चलते आएंगे ना उधर इमली तला, फिर नित्यानंद वट, फिर भ्रमर घाट, फिर जुगल किशोर का मंदिर, फिर उसके बाद में आगे चल के आएंगे तो बीच में आपको ये मंदिर मिलेगा। लेकिन एंट्रेंस उसका उस तरफ से है, गोकुलानंद के मंदिर की तरफ से है, एंट्रेंस जमुना जी की तरफ से नहीं है। और इतना भाग्य हमारा रहा है, इस कमरे, इस मंदिर के पहले मंजिल पर प्रभुपाद जी रहे कुछ समय के लिए, और कहते हैं गीता जी का अनुवाद उन्होंने यहाँ बैठ के किया पहले मंजिल पर। और वो जो कमरा था ना, अभी भी है कमरा वो पहले मंजिल पर, वो कमरा इतना सुंदर है पहले माले पर कि उधर बाहर आते ही आपको जमुना जी का दर्शन होता है, पूरी जमुना जी का दर्शन, वो भी एकांत में है। ऐसा नहीं कि आप परिक्रमा रास्ते पर हो, थोड़ा पीछे भी है लेकिन ऐसा ऊंचाई में है कि जमुना जी का पूरा सुंदर दर्शन वहाँ पर होता है। तो कैसे हमको हुआ दर्शन? वो हमारे एक परम मित्र, परम प्रिय मित्र है ब्रजवासी, दिनेश शर्मा करके। तो दिनेश शर्मा जी का फ्रेम का बिजनेस था, तो उनका फ्रेम का बिजनेस का फ्रेम बनाने का काम इस कमरे में होता था। उन्होंने वही कमरा किराए पर लिया था। अभी उस कमरे में कुछ नहीं है। जब मैं था 92 में वृंदावन में, तभी मेरे मित्र ने मुझे बहुत सारी मदद की थी रहने के लिए वगैरह वगैरह, तो मुझे वो लेके गए थे अपने उस फ्रेम बनाने वाले उसके फैक्ट्री में या कोई प्रयोगशाला में, क्या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो ही कमरा प्रभुपाद जी के रहने का कमरा था। और आज आप जाएंगे आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि और कोई किराएदार बैठा हुआ है। तब भाग्य क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मित्र ही वो किराएदार थे, और नीचे बंसी गोपाल का मंदिर है, पहले माले पर प्रभुपाद जी का कमरा है। उसके बाद निर्मल चंद्र गोस्वामी के पिताजी ने प्रभुपाद जी को आमंत्रण दिया कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, आप गौड़ीय संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर दामोदर जी के मंदिर में क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर से रूप गोस्वामी ने भजन किया है, जीव गोस्वामी ने भजन किया है। तो फिर उनके प्रेममय बिनती से एक कमरे के बजाय दो कमरे दिए उनको, और प्रभुपाद जी वहाँ से शिफ्ट हो गए और फिर वो कमरे में रहने लगे दामोदर जी मंदिर में। देखिए आप, ये वो दर्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनके कमरे से बाहर खड़ा रह के सामने आपको एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे जमुना जी का दर्शन हो रहा है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है आकाश का दर्शन, वो गली है गोकुलानंद मंदिर से आने वाली, मंदिर को प्रवेश करने वाली। जैसे कि आपका ये रास्ता है ना, ये रास्ता कहाँ से है, ये रास्ता जो आपको दिखाई पड़ रहा है एंट्री मारने का ना, ये आपको यहाँ से ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, ये जो रास्ता है ना, वो ये रास्ता वो है एंट्री वाला, अंदर से आने वाला। फिर आगे दर्शन देखिए, मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर बंशी गोपाल जी का दर्शन है, गाय का दर्शन भी है, बछड़े का दर्शन भी है। और ये वो कमरा है प्रभुपाद जी का, जिस कमरे में प्रभुपाद जी ने निवास किया था। बहुत दुर्लभ स्थान है ये, आप प्रणाम कीजिए। प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट का अनुभव किया है अपने आंदोलन को स्थापन करने के लिए, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन एकाग्र एकांत मंदिर है, इसमें कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, एक परिवार रहता है वो मंदिर की सेवा करता है और शांति से रहते हैं। ठीक है, ये कमरे में बैठे हुए प्रभुपाद जी का यह चित्रपट है, देखिए बहुत दुर्लभ चित्रपट है। आप प्रणाम कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम, समय बहुत कम है। और ये राधा बंसी गोपाल जी का दर्शन है, कृपा करके राधा बंसी गोपाल के चरणों में आपका वंदन अदा करना, प्रार्थना करना कि हमारी हमको आपके चरणों में सेवा में रखो। श्री श्री राधा बंसी गोपाल जी महाराज की जय हो। फिर वहां से निकल के अभी रंगनाथ मंदिर जा रहे हैं, ये बड़ा फेमस मंदिर है लेकिन ज्यादा कुछ लोग जाते नहीं यहाँ पर। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि सारे धाम जो है वृंदावन में सम्मिलित है, तो रंगनाथ जी धाम जो है वो यहाँ पर प्रकट हो गया है। आप यहाँ पर अंदर प्रवेश करेंगे ना तो ये पूरा ऐसा वातावरण है कि आपको लगेगा ना कि आप वृंदावन में हो, आपको लगेगा आप साउथ इंडिया में ही हो। पूरा कपड़े भी वैसे पहनते हैं, तिलक भी वैसे लगाते हैं, बात भी सब तमिल में करते हैं, सेवा भी वैसे करते हैं। और विशाल, इतना विशाल जगह है जैसा रंगनाथ जी में है, बहुत विशाल जगह ही जगह है, वेरी बिग। उनका ना उत्तर दक्षिण भाग में, वृंदावन के दक्षिण भाग में पूरा कई कई हेक्टर जगह है उनकी। एक उसमें बगीचा है रंगनाथ जी का, वहाँ रंगनाथ जी साल में कई बार आते हैं विश्राम करने के लिए, रथ यात्रा में आते हैं, डोला उत्सव में आते हैं, रासलीला में आते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं, वहाँ उनको सेवा होती है। बगीचा है उनका पूरा एकांत बगीचा। तो ये उसका प्रवेश द्वार है और ये पहला प्रवेश द्वार है। अभी आगे चलिए, आप दिखाता हूँ आपको, ये दूसरा प्रवेश द्वार है, ये तीसरा प्रवेश द्वार है ना। ऐसा करते करते ये मेन गोपुरम ये है, मेन भी नहीं है, इसके आगे और एक गोपुरम है। और ये श्री रंगनाथ जी का विग्रह देखिए, ऑफकोर्स इतना बड़ा नहीं है जितना रंगनाथ जी में है, रंगनाथ जी में बहुत बड़ा है। तो ये श्री देवी भूदेवी और उसके आगे जो है ना लेटे हुए भगवान है अनंत शेष की छाया में, और ये उनके आगे जो खड़े हैं वो उनकी उत्सव मूर्ति है कस्तूरी रंगनाथ जी, और श्री देवी भूदेवी के भी प्रतीक मूर्ति मूर्ति वहाँ पर है। ये देखिए पीछे भगवान लेटे हुए हैं रंगनाथ जी महाराज, और ये सामने जो खड़े हैं वो कस्तूरी रंगनाथ जी हैं। उनके छाती पर चंदन का गोला रखा गया है, लक्ष्मी जी का स्थान है वो श्रीवत्स जी का, वहाँ पर चंदन रखते हैं, और श्री देवी भूदेवी बाजू में खड़े हैं। और मैंने आपको बताया था कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात सबसे पहला विग्रह पृथ्वी पर प्रकट हुआ वो रंगनाथ जी का था, वो ब्रह्मा जी के पास था। और ब्रह्मा जी को वशिष्ठ मुनि ने और स्वयंभू मुनु ने विनती किया तो रंगनाथ जी का विग्रह उनको पृथ्वी पर जाने के लिए दिया गया। सबसे पहले अयोध्या प्रकट हुई, सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान हो गई, और फिर विग्रह के लिए उन्होंने रंगनाथ जी को मांगा तो रंगनाथ जी वहाँ प्रकट हो गए। फिर प्रभु रामचंद्र ने भी उनका सेवा किया है, फिर रंगनाथ जी को विभीषण को भेंट दिया है और विभीषण वहाँ रुक गए कावेरी में स्नान करने के लिए, और रंगनाथ जी वहीं पर रह गए। तो ये रंगनाथ जी का प्रति धाम जो है वृंदावन धाम में यहाँ पर प्रकट है। तो सब लोग रंगनाथ जी महाराज को प्रणाम कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उम्मीद है कि आप थकने गए होंगे, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है कि आप सब लोग उत्साह में रहेंगे और मेरी कथा ऐसी चलती रहेगी। जय श्री राधे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अभी ये पुष्करिणी है, यहाँ ये रंगनाथ जी की लीला स्थली है। यहाँ पर रंगनाथ जी आकर लीला करते हैं, उनके उत्सव विग्रह को यहाँ पर स्नान भी कराते हैं, जल विहार भी कराते हैं, नौका विहार भी कराते हैं। ऐसा सुंदर बहुत विशाल पुष्करिणी यानी जलाशय अंदर मंदिर के अंदर ही है, प्रांगण में। तो उसके आगे चलेंगे हम और देखिए, फिर रंगनाथ जी का भी मैं आपको अंदर घुमाऊंगा ना तो पूरा दिन चला जाएगा। हाँ, अभी अब फिलहाल हम एक पिछले साल ही गए थे वहाँ पर। इतना विशाल जगह है, आप क्या बताऊँ आपको, इतनी जगह है, इतने प्रकार के यहाँ दर्शन हैं, इतने प्रकार के विग्रह हैं, जैसे रंगनाथ जी के मंदिर में हैं, जगह जगह देवी गणेश जी सबके बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी सबके विशाल मंदिर है, बीच में रंगनाथ जी विराजमान हैं, और उसके पीछे भी वो पीछे भी एक जगह है, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी, राधा ब्रज मोहन के मंदिर उसके पीछे हैं। उसको आगे से एंट्री करेंगे, पूरा घूमेंगे और पीछे से बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलते ही वहाँ पर आपको ज्ञान गुदड़ी और ब्रजमोहन का दर्शन होगा, तो वो भी आपको कराऊंगा। अभी रंगनाथ जी के बाहर आएंगे, ये बिल्कुल गोविंद जी के मंदिर के सामने है, ये 64 समाधि और रंगनाथ जी का मंदिर का एंट्रेंस। अभी आप जहाँ से अंदर गए वहीं से बाहर आ गए और लेफ्ट में टर्न किया तो एक सुंदर स्थान आएगा, उसका नाम है 64 समाधिज। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के 64 निकट के पार्षदों का समाधि बनाया गया है। और एक रोचक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि समाधिज आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज ओरिजिनल, सेकेंड इज पुष्प समाधि, एंड थर्ड इज स्मृति समाधि, स्मृति समाधि मेमोरियल टाइप समाधि। और स्मृति में क्या होता है कि उस व्यक्ति के स्मृति में उसका आपको दुपट्टा मिल सकता है, उसकी चप्पल मिल सकती है, उसकी उसकी काठी मिल सकती है, उसका कोई वस्तु उसने उपयोग किया वो मिल सकती है, उसको कहते हैं स्मृति समाधि। और स्मृति समाधि में एक और टाइप है नाम समाधि, उस व्यक्ति का नाम लिखकर भी आप उस समाधि बना सकते हो। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक टाइल पे लिखा और टाइल को आपने समाधि बना दिया, तो उसको कहते हैं नाम समाधि। तो इस समाधियों के संग्रह में 3 प्रकार की समाधियाँ हैं, किसी किसी की मूल समाधि भी है, शरीर भी समाधि संस्कार करके रखा गया है, और किसी किसी को समाधि जहाँ रखी बनाई गई है वहाँ के पुष्प समाधि संस्कार में जब पुष्प बनते हैं ना वहाँ पर ऑफर करते हैं, वो पुष्पों को उठाकर किसी और जगह पर 2-4-5 जगह पर जहाँ जहाँ उनका प्रचार का केंद्र है वहाँ पर वो पुष्प रखकर उनकी समाधि बनाते हैं, छतरी बनाते हैं, उसको पुष्प समाधि कहते हैं। और अगर जैसे ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर है, उनके पास उनका शरीर नहीं बचा उधर, तो पुष्प भी नहीं थे, जब नदी के नीचे पुष्प कहाँ मिलेंगे, तो मट्टी का बनाया गया ना वो, तो उनका नाम लिख के भी आप समाधि बना सकते हैं, इनकी समाधि भी इसके अंदर है। इस प्रकार से 3 प्रकार की 64 समाधियाँ इस जगह पर हैं। और भी बहुत लंबे लंबे नाम है उसके, मैंने तो सब नोट नहीं किए, लेकिन परमानंद भट्टाचार्य बहुत सारे भक्तों के यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई है। आप सब यहाँ पर एक परिक्रमा कीजिए और सब लोगों को प्रणाम कीजिए, बड़े बड़े आचार्यों को सबको प्रणाम कीजिए। ये वृंदावन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, 64 समाधियाँ। देखिए बड़ा विशाल क्षेत्र है ये, लग लग के समाधियाँ हैं यहाँ पर, बड़े बड़े आचार्यों की समाधि, सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ से बाहर आएंगे और फिर राइट टर्न लेंगे रंगनाथ जी की ओर, लेकिन रंगनाथ में जाएंगे आगे चले जाएंगे, जब आगे चले जाएंगे ना तो हम लोग ऐसे एक अलग इलाके में जाएंगे, दक्षिण इलाके में, जहाँ पर वो देवरा बाबा घाट है जमुना जी का, उस तरफ जाएंगे। और उस तरफ बंसीवट है, उस तरफ ब्रह्मकुंड है, उस तरफ धीर समीर है, सब पूरा एक बुरा एक समुदाय है स्थानों का, उसका हम क्विकली दर्शन करेंगे। तभी हम बंसीवट में आ रहे हैं, ये बंसीवट जमुना किनारे पे बिल्कुल। देखिए ये बंसीवट का विग्रह है राधा बंसीवट बिहारी का, और वो लड्डू गोपाल जी भी है, और बाजू में बंसीवट पे भगवान ने बीच रात पर गोपियों को मुरली बजाकर बुलाया था, उसका रास का दर्शन है। एक एक गोपी के सामने एक एक रूप बनाकर भगवान ने रास रचाया था। देखिए भगवान यहाँ पर रास कर रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। तो ये वो वट है, वट वृक्ष, बहुत विशाल वट वृक्ष है ये। हाँ, इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में आपको दिखाई पड़ेगा ये बंसीवट। इसको एक एक जगह कैमरा में हम पकड़ नहीं सकते, इतना विशाल है कि जगह जगह से अलग अलग एंगल से लेना पड़ता है। तो ये देखिए अलग एंगल से बड़े विशाल विशाल बूंदे हैं इसके। इसके शाखा पर बैठकर शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण भगवान ने, कृष्णचंद्र ने बंसी बजाई थी और गोपियों को बुलाया था। दोबारा आगे फोटो, ये मेन विग्रह है जो यहाँ पर भी आपके सामने है। ये भी झूला में बैठे हुए हैं, झूलन यात्रा के समय निकाला हुआ ये चित्रपट है और आम समय में निकाला हुआ ये चित्रपट है। तो अभी इसकी बड़ी लंबी कहानी है, रास पंचाध्यायी दशम स्कंद में। तो बीच रात में भगवान ने मुरली बजाई तो सब गोपियां सब कुछ भूल गई। उन्होंने पांचवी धुन बजाई थी मुरली में, जो पांचवी धुन केवल गोपियों के लिए होती है और सभी गोपियों को सुनाई पड़ती है, उनका आवाज़ उनका नाम सुनाई पड़ता है। तो वो भाव विभोर हो गई और बीच रात में जंगल में भागी। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में वो पास हो गई। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी की एक रात तक का समय रास लीला किया, पृथ्वी की एक रात में, ब्रह्मा जी की एक रात मानिए करीब करीब 132 कोटि साल, इतने समय तक भगवान ने रास रचाया। उसके बीच में गोपियों को घमंड हुआ, पूरा रास शुरू होने के पहले ही उनको घमंड हुआ क्योंकि भगवान ने गोपियों की बहुत सेवा की, किसी के चरण दबाए, किसी को जल पिलाया, किसी के श्रृंगार किया, किसी को बाल संवारे, तो उनको लगा मैं कितनी स्पेशल हूँ। तो सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को लेकर भागे, निधिवन में गए, निधिवन में कुछ लीला किया तो राधा रानी को थोड़ा सा मान हो गया तो उनको भी त्याग दिया। फिर इमली तला आए, फिर वहाँ पर दर्शन हुआ, उसके बाद में रास शुरू हुआ है, ये सब होने के बाद में प्रथम रास। लेकिन ये सब कुछ होने के पहले शिवजी महाराज को खबर मिली है कैलाश में कि भगवान अभी रास करने वाले हैं। तो वो रास का दर्शन करने के लिए भाग भाग के नीचे आए, एकदम आतुरता से लौट के आए और सीधे मंडल में प्रवेश करने लगे। तो ललिता विशाखा ने उनको रोका, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो आप? तो कहते हैं यहाँ पर केवल पुरुष एक ही है, बाकी सब स्त्रियां हैं, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। क्या, कैसे स्त्री बनना पड़ेगा? बोलते मान सरोवर जाओ, वहां पर स्नान करो तो आपको गोपी का शरीर प्राप्त होगा। तो इन्होंने आव ना देखा ताओ, आगे ना देखा पीछे, सीधे भाग के छलांग लगाई, जमुना जी को पार किया, मान सरोवर में स्नान किया। मान सरोवर में राधा रानी ने एक बार मान करके रूठ कर बैठ गई थी और रूठ कर अश्रु बहाए थे। वो वहाँ पर एक बड़ा जलाशय बन गया है मान सरोवर, उसमें शिवजी महाराज ने स्नान किया तो उनको गोपी शरीर प्राप्त हो गया। वैसे ही भाग के लौट के आए तो उनको देखकर सब गोपियाँ हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि ऐसा तो भाव आतुरता का शिवजी का था, तो शिवजी को गोपी शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन शरीर में जो सांप थे, हाँ, बाजू बंद में, कलाई बंद में, गले में, सर पे जो सांप थे, वो तो उस भाव में नहीं थे, तो सांप के सांप ही रह गए। तो इतनी सुंदर युवती गोपी बने वो, और सुंदर युवती के आसपास हाथ में गले में सब सांप दिखाई पड़ रहे, तो इसलिए उनको हंसी आई देखकर। उनको कैसे महात्माएं, देखी इतनी आतुरता है, कितना भजन, कितना प्रेम है उनके मन में। कोई परवाह नहीं लोगों को क्या होगा, पार्वती क्या बोलेगी, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। भगवान की सेवा के आवेश के सामने कोई परवाह नहीं है उनको। तो बड़े प्रेम से उनको अप्रिशिएट करते हुए गोपियों ने, राधा ललिता विशाखा ने उनका श्रृंगार किया और उनको गोपी बना दिया, गोपीश्वर। हाँ, और फिर उनको हाथ पकड़ के रास मंडल के अंदर लेके गए। उनके साथ में एक मुनि भी थे, आसुरी मुनि, उनको भी गोपी शरीर प्राप्त हुआ था, उनको भी श्रृंगार किया और दोनों को लेके रास मंडल में गए। ये कथा गर्ग संहिता में आती है कि आसुरी मुनि शिव जी को मिलने गए थे कि मुझे कहीं कृष्ण नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए कृष्ण, गोलोक में भी देख के आया। तो शिव जी ने कहा कि वो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, अभी रास लीला करने वाले, मैं ले जाने वाला हूँ। तो आसुरी मुनि ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो दोनों साथ में आए थे, दोनों ने गोपी शरीर प्राप्त किया मान सरोवर में स्नान करके, और उसके बाद में अंदर चले गए और उन्होंने चामर सेवा की राधा श्याम सुंदर की, जो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। बहुत देर तक चामर सेवा की, फिर भगवान ने, राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप रासमंडल के बाहर रहो और वहीं से दर्शन करो और हमारे मंडल का रक्षा भी करो। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है, ये मंदिर जो है वो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, इसके थोड़ा सा आगे रासमंडल है। मतलब यहीं बैठकर, उस समय वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, पूरा जंगल था। भागवत में क्या दिया है कि बीच जंगल में अंधेरे में गोपियाँ भाग के गई थी, घने जंगल में, बहुत गहराई में। तो मतलब ये सब इलाका पूरा जंगल का था। तो रासमंडल बीच जंगल में था और उसके बाहर उनको बिठाकर गोपेश्वर महादेव ने दर्शन भी किया और आज भी वो रासमंडल की रक्षा भी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक गोपियाँ देख रही हैं कि वो गोपी बनकर शिवजी महाराज आए हैं, कुतूहल से देख रही है उनको। और ये है उनका अंदर का मंदिर का दृश्य। और हर हर रोज शाम को ये शिवलिंग को गोपी बनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। सवेरे के समय वो लिंग रहता है और हर शाम को वो जब रास का समय होता है, संध्या होती है, तो इनको गोपी बनाकर श्रृंगार करके वहाँ पर रखते हैं। देखिए और एक श्रृंगार का दर्शन, फिर देखिए और एक श्रृंगार का दर्शन। और बाजू में यहाँ पर वो गोपी खड़ी हैं, नाग अपने शरीर पर धारण किए हुए गोपीश्वर बन के। और ये वो शिवलिंग है। अभी आप पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, आप गौर से देखिए, ये शिवलिंग के ऊपर राधा कृष्ण का दर्शन है। ये बहुत अद्भुत शिवलिंग है। इस शिवलिंग में राधा कृष्ण का दर्शन आपको मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत गौर से देखिए और इनको प्रणाम कीजिए, गोपेश्वर महादेव जी को, और प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर जो उत्सुकता है, जो आतुरता है, ईगरनेस है, लौल्य है भगवान के लिए, वो थोड़ा अंश रूप में हमको भी प्राप्त हो जाए। कैसे आपको अपने शरीर की परवाह नहीं कि श्रीलिंगी है कि पुल्लिंगी है कि क्या है, कौन सी सेवा दे रही है, पत्नी क्या बोलेगी, कोई परवाह नहीं आपको। ऐसे आतुरता होने से ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। तो आप ऐसे आतुरता की मांग करना इनके चरणों में गोपेश्वर महादेव को, हरे कृष्णा। फिर आगे जाएंगे, इसी इलाके में आगे चले जाएंगे तो एक एक विभाग आएगा। देखो आगे जमुना जी है ना, आगे जमुना जी है। तो जमुना किनारे में ये स्थान है धीर समीर। कहते हैं कि भगवान ने जो लीला किया था ना यहाँ पर, वो लीला को देखते हुए हवा भी थम गई थी वहाँ पर, हवा भी रुक गई थी। धीर मतलब हवा जो बहती है ना, वो रुक गई वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए, यहाँ के लीला देखते हुए। और ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पर एक नाम ये दिया गया धीर समीर, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सुगंधित और मंद मंद शीतल हवा बहती है, इसलिए एक भी उनको नाम दिया गया है धीर समीर। हरे कृष्णा धीर समीर में ये अंदर दर्शन है, बहुत सुंदर मंदिर का। और यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य की समाधि भी है, उनके मंदिर के विग्रह के दर्शन भी है। और आचार्य श्रीनिवास जो है ना, वो चैतन्य महाप्रभु के तेज का अवतार हैं, द्युति, द्युति यानी एफलजेंस, चैतन्य महाप्रभु के तेज का अवतार है वो। और जीव गोस्वामी के अंदर उनकी शिक्षा हुई है, जीव गोस्वामी के अंदर श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम जी, तीन लोगों की शिक्षा वहाँ पर हुई है। आप आज के दिन आचार्य श्रीनिवास जी का तिरुभाव दिन है, बहुत सुंदर तिथि है ये भी, गो भगवान के तेज का अवतार थे। तो आप इनके लिए, इनके साथ इनके लिए प्रार्थना करना। ये जीव गोस्वामी के बाद में गौड़ीय संप्रदाय के नेता बने, जीव गोस्वामी इनको ट्रेनिंग दिया, फिर वो भी अंतर्धान हो गए। उसके बाद में श्यामानंद, नरोत्तम और आचार्य श्रीनिवास, इनके नेतृत्व में आगे का प्रचार हुआ। और आचार्य श्रीनिवास ने वो जो ग्रंथ थे जीव गोस्वामी ने बनाए हुए, उसकी कॉपी बनाकर वो उड़ीसा और बंगाल में लेके गए थे जानवा देवी के आदेश के अनुसार। बहुत लंबी कहानी है वो, कैसे ये तीनों वो ग्रंथ लेकर गए थे और वो बीरम्बीर राजा के डाकुओं ने चोरी कर लिया उसको, फिर आचार्य श्रीनिवास ने वो पूरा राज्य को भक्त बना दिया, फिर राजा के पंडितों के साथ वाद विवाद हुआ, उसमें उनको हरा दिया। और प्रण ये था कि अगर राजा के पंडितों को इन्होंने हराया तो राजा इनका शिष्य बनेगा, तो इन्होंने हरा दिया, तो उस प्रण के अनुसार राजा शिष्य बन गया। तो शिष्य बनते ही राजा ने पूछा कि क्या सेवा करूं आपकी, तो आचार्य ने कहा कि मेरे ग्रंथ यहाँ गुम हो गए हैं आपके राज्य में, मुझे लौटा दो। तो समझ गया कि जो हमने चोरी करके लाए थे ना, यही इनके ही ग्रंथ हैं। तो सारे ग्रंथ राजा बीरम्बर ने आचार्य श्रीनिवास को वापस दिए। ऐसे उनके जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं। इनको नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद नवद्वीप गए थे और उन्होंने सच्ची माता और विष्णुप्रिया देवी के हाथ का भोजन भी किया हुआ है उनके नवद्वीप भेंट में। वहाँ बेहोश हो गए थे वो जाके महाप्रभु जी की याद में। इस तरह से इनकी जीवनी बहुत अद्भुत है। मैंने एक पूरा 2 घंटे का प्रवचन राधा गोपीनाथ में दिया था एक बार इनके जीवनी के ऊपर। आप उनको यहाँ प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हमारे संप्रदाय के बड़े पावरफुल आचार्य हैं ये। ये भी बहुत दुर्लभ स्थान है, कोई जाता नहीं है। धीर समर के पास ही गोपाल गुरु इनकी समाधि है। अभी गोपाल गुरु की कहानी बड़ी अद्भुत है, सब लोग ध्यान से सुनना। ये गोपाल नाम का छोटा बालक था, जगन्नाथपुरी में था। तो चैतन्य महाप्रभु तो वहां पर थे, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्युत कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, आप कहीं बाहर जा रहे क्या? आर यू ट्रैवलिंग समवेयर? अच्युत कृष्ण प्रभु, यू आर ट्रैवलिंग? हरे कृष्णा, लुक्स लाइक यू आर ट्रैवलिंग। हरि बोल, आई अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी, स्टिल यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर व्हाइल ट्रैवलिंग। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो गोपाल नाम के बालक थे जगन्नाथपुरी में, और चैतन्य महाप्रभु एक बार शौच जा रहे थे, शौच यानी टॉयलेट जा रहे थे। तो उन्होंने ना जीभ को हाथ में पकड़ा था ऐसे, और जीभ को हाथ में पकड़ के जा रहे थे वो। तो रास्ते में गोपाल मिले उनको, बालक। तो गोपाल ने पूछा, अरे महाप्रभु जी, आप जीभ पकड़ के क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो मेरा जो जीभ है ना, वो हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करती है, और मैं अभी शौच जा रहा हूँ तो जगह बहुत पवित्र है, और भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, तो मैं भगवान का नाम उच्चारण करूँ तो भगवान को मेरे साथ में वो गंदी जगह आना पड़ेगा, और गंदी जगह का वातावरण का अनुभव करना पड़ेगा, इसलिए मैं बंद करने के लिए मैं जीभ पकड़ के रखा हूँ। तो गोपाल क्या बोलता है, देखो सबसे अधिक अशुद्ध जगह कौन सी होती है? जब हमारी मृत्यु होती है ना, सबसे बड़ी घटना जो है मृत्यु, सबसे अपवित्र और सबसे अशुभ मानी जाती है वो। तो उस समय कहा गया कि भगवान का नाम लेना चाहिए और वो आपको वो उस अशुद्ध अवस्था से मुक्त कर देगा। तो शौचालय तो उतना अपवित्र जगह नहीं है, इसलिए आपको शौचालय में भगवान का नाम लेने का सहूलियत है, आप ले सकते हैं। इस प्रकार से उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपाल तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे भगवान के नाम के विषय में इतना बड़ा ज्ञान दिया है, इसलिए आज से तुमको मैं गोपाल गुरु के नाम से जानूंगा। तो ये गोपाल गुरु तो बालक थे, बाद में बड़े हो गए, और बाद में बड़े होकर फिर वो जगन्नाथपुर में निवास किया उन्होंने। जगन्नाथपुर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु जिस मंदिर में रहते थे ना, राधा राधाकांत मंदिर, गंभीरा काशी मिश्रा का मंदिर था, वो घर था उसका। तो महाप्रभु अंतर्धान हो गए, काशी मिश्रा भी अंतर्धान हो गए, तो उन्होंने इस मंदिर का अपना नियंत्रण अपने हाथ में लिया और मंदिर की देखभाल की, सेवा की। उनके एक शिष्य थे ध्यानचंद्र गोस्वामी, उनके भी साथ उन्होंने मंदिर का देखभाल किया, और उसके बाद में इनका भी देहांत हो गया। लेकिन उनका देहांत होने के समय पे काशी मिश्रा की जमीन का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, क्या कहते हैं उसको, स्वामित्व का जो होता ना, अभी इसके नाम पे था उसके नाम पे, तो उनके मृत्यु के होने के पहले वो नहीं हुआ था। तो जैसे इनकी मृत्यु हो गई ना, तो गवर्नमेंट ने आकर इस पर कब्जा करने का प्रयास किया। किस पर? काशी मिश्रा के मंदिर के ऊपर। तो कहते हैं कि इनका तभी समाज संस्कार हो रहा था किधर, जगन्नाथपुरी में। तो ये देखकर कि इनके मृत्यु का लाभ लेकर वहां के अधिकारी इस जगह पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उठ गए, वापस आ गए, वापस आ गए, बहुत झगड़ा किया गवर्नमेंट के अधिकारी से, सारे पेपर पर साइन किया, और अपने शिष्य जो है ना ध्यानचंद्र गोस्वामी, उसके नाम पर सारे कागज पत्र बनवाए, और कई महीनों के बाद वापस एक बार गुजर गए एक बार गुजर गए थे, तो वापस आए, सारे पेपर ठीक ठाक किए, 3-4 महीने जिए, और फिर वापस शरीर त्याग दिया उन्होंने, तो उनकी समाधि बन गई। अभी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, वहाँ पर हो गया उनका सब कुछ, समाधि बन गया, सब कुछ हो गया। तो भक्त लोग है ना, वो वृंदावन में आए, तो शिष्य लोग वृंदावन में आए, ध्यानचंद्र भी वृंदावन में आए। तो वृंदावन में बंसीवट के पास जो जगह है ना धीर समीर, वहां पर एक पेड़ के पास बैठे हुए मिले, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया उनको, अरे महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ, निश्चित रूप से मैं ही हूँ, और ये पेड़ के पास मेरे समाधि बना देना और मेरे विग्रहों को यहाँ पर स्थापन करना। तो फिर उनके विग्रह को स्थापन किया गया, उनकी एक पुष्प समाधि बनाई गई और राधा राधाकांत की जो मूर्ति है ना जगन्नाथपुरी में, उसकी प्रतिमा मूर्ति यहाँ स्थापन की गई। तो ऐसे ही अद्भुत आचार्य हैं गोपाल गुरु गोस्वामी। तो धीर समीर में उनका उनके मंदिर को बनाया गया है, उनके विग्रहों को रखा गया है और उनकी समाधि भी बनाई गई है। ये अद्भुत स्थान आपने कभी देखा नहीं होगा, अगले बार जब जाएंगे जरूर दर्शन करना। ये है गोपाल गुरु जी। वे तो बालक अवस्था में नहीं है, मैं बड़े अवस्था में है। हरे कृष्णा। उसी के पास यहाँ पर तीन समाधियाँ हैं, रामचंद्र कविराज जो नरोत्तम दास ठाकुर के बड़े अच्छे स्नेही और पार्षद थे, और आचार्य श्रीनिवास की लड़की जिनका नाम था हेमलता ठाकुरानी। ऐसे तीन विग्रह यहाँ पर इस इनकी समाधि यहाँ पर हैं, उसके पास में ही है ये। एक्चुअली गोपेश्वर के पास में है और आगे उसके धीर समीर है। तो रामचंद्र कविराज और ठाकुरानी हेमलता, इनका यहाँ पर समाधि है। फिर और एक समाधि यहाँ पर है, गौरीदास पंडित। मैंने आपको कहा था ना ये सुबल के अवतार हैं, और ये सुबल के अवतार इनके शिष्य थे हृदय चैतन्य, और उनके शिष्य थे श्यामानंद पंडित। तो ये सुबल जी के अवतार गौरीदास पंडित जो अंबिका काला में रहते थे, उनकी समाधि भी यहाँ पर धीर समीर के पास में है। और उनके राधा श्यामाराय, देखो यहाँ पर राधा श्यामाराय का दर्शन है जो गौरीदास पंडित जी उनका पूजन करते थे। बहुत सुंदर विग्रह हैं, कि मंदिर भी उधर ही है और उनका समाधि भी यहाँ पर है। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से अभी हमारी कथा को हम लोग यहाँ विश्राम देंगे, और संध्या की सभा में राधा ब्रजमोहन के मंदिर से हमारी कथा को हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उम्मीद है सबको कथा अच्छी लगी होगी, बहुत लंबी कथा थी। कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके मदन मंजरी, यू कैन टेक ओवर।
यस प्रभु जी, आई किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्लीज रसा में प्रभु क्वेश्चन आई विल
लेकिन ये जो धाम यात्रा हो रही है प्रभु जी, आई थिंक ये हमारे पर्सनल विजिट से कम नहीं लग रही है, और जो कानों के माध्यम से जो हम सुन रहे हैं इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है गुरु जी, और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कभी कभी हम धाम में थक जाते हैं फिजिकली, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी एक प्रश्न है मेरा, जैसे कि हम जानते हैं कि वज्रनाथ जी ने ये विग्रहों का निर्माण करवाया, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी का, और अभी आपने कहा कि मधु पंडित जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए और वही भगवान मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए और वही ये मूर्ति है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो समझ।
देखिए ऐसा है ना कि सिंपल बात यह है कि वही गोपीनाथ जी का विग्रह है ये जो लुप्त हो गया था, दोबारा भगवान ने प्रकट कराया। वही गोविंद जी का विग्रह था जो टील के अंदर था, जो भगवान ने उसको प्रकट कराया। वही मदन मोहन जी थे वो लुप्त हो गए थे, जो अद्वैत आचार्य के सामने प्रकट हो गए। विग्रह वही है, वो एक जगह पर अपने आप प्रकट हो गए, एक जगह पर जमुना जी में प्रकट हो गए उनको उठाने के लिए, एक जगह टील में थे वहाँ से खुदाई करके प्रकट हो गए। तो भगवान अपनी अलग अलग लीला से विविध प्रकार से प्रकट होते हैं, लेकिन प्रकट होने के पहले वो मूर्ति प्रकट कराने के पहले उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया मधु पंडित जी को, और फिर वही विग्रह प्रकट किया जो वज्रनाभ ने बनाया था। ये रहस्य है उसके पीछे।
थैंक यू।
और आपने मुझे बहुत उत्साह दिया ये सुनाकर कि कभी कभी थक जाते हैं हम लोग बड़ी यात्रा में, और आप नहीं थके और सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है।
नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मतलब मैं अपने हृदय से सच में बोलता हूँ।
जय हो, जय हो।
Everyone will agree to this, that this is one of the best यात्रा which we are having, प्रभु
जी। जय हो।
बहुत, और जो आप जो पिक्चर बता रहे हैं ना प्रभु जी, जैसे उसके ऊपर इतना, क्योंकि जब वहाँ से हम देखते हैं तो इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे आपने गुंजमाला और शालिग्राम शिला दिखाई और वो सारी सारी चीज बहुत ही क्लियर है, बहुत क्लियर।
जय हो, धन्यवाद। और कोई? श्याम मोहन जी महाराज कुछ तो बोलो, इनको अनम्यूट करो। यस अनम्यूट। यस दंडवत प्रणाम। उसके पीछे रहस्य एक ही है, सेवा करने वालों की इच्छा, यही रहस्य है उसके पीछे। देखो ठाकुर जी ना अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं ना उनके अधीन हो जाते हैं। फिर टोपी पहनाओ, घड़ी पहनाओ, पायल पहनाओ, जो पाए पहना दो, सब पहन लेते हैं। और भी बताता हूँ मैं, भक्त लोग क्या करते हैं, कभी नमक के बिना सब्जी बनाते हैं, कभी नमक ज़्यादा डाल के सब्जी बनाते हैं, कभी तीखा बनाते हैं, कभी हल्का बनाते हैं, सब खा लेते हैं बेचारे वो। मेरा तो ऐसा विचार है, मतलब मेरी धारणा ऐसी है कि सबसे अधिक प्रयोग लोग ठाकुर जी के ऊपर करते हैं नए नए आइटम का। है कि नहीं बताओ? क्योंकि जब वो बड़े उत्सव में वो आता है ना महाप्रसाद, तो जब हम उसको पाते हैं तो पता चलता है कि ये बटाटे वड़े में तो तड़का अच्छी तरह से पकाया ही नहीं, बेसन भी कच्चा था, आलू भी कच्चा था, ये सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, ये सब कुछ बाद में पता चलता है खाने के बाद, लेकिन भगवान ने तो खा लिया उसको पूरा। और हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन है ना, वही आइसक्रीम है, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी है, मैंगो फ्लेवर का भी है, 50 फ्लेवर का, वही चीज़ बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, बोले हमने 1001 अर्पण कर दिया। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, जो उनकी सेवा करते ना प्रेम से उनकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। सो वो घड़ी पहना देते उनको, और क्या है, आनंद आता है उनको। अभी कभी गोपी बना देते हैं उनको, मटका धारण करा देते हैं, कभी पेन देते हाथ में खत लिखने के लिए, ऐसे अद्भुत मनोरथ करते हैं। और भक्तों के मनोरथ के अनुसार भगवान अपने मनोरथ को कर लेते हैं, ये प्रेम है भक्तों का भगवान का। थैंक यू वेरी मच। और गोपीनाथ जी महाराज, गोपीनाथ प्राण प्रभु। यस प्रभु जी,
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आर यू एबल टू हियर मी प्रभु?
यस यस, आई एम एबल टू हियर यू।
हरे कृष्णा।
यस,
सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कथा व्हिच यू आर गिविंग अस एवरी डे एवरी मोमेंट। सो लॉन्ग द वर्स यू आर सिटिंग एंड गिविंग, इन फैक्ट माय मदर आल्सो वाज आस्किंग, ही इज सिटिंग फुल डे गिविंग और इज एडिटिंग एंड गिविंग।
जय हो।
थैंक यू वेरी मच। So I had one question, that is in Gokula Nanda Mandir there were deities of Vijay Govind ji, Vinod ji and all that. So they had one clouds or something like that. Is it the winter season?
Winter, yes. Yes, winter. Winter.
Cold climate.
Yes. If you go in the cold season now, you will find Radha Vallabh ji, Radha Raman ji, everybody is wearing gloves. Everybody.
Okay.
Yes.
And one more request I had, Dhruji, next time when Maharaj will conduct personal or physical yatra to say Vrindavan, Mayapur or something, 1 month before like this, if you conduct, you will refresh us, and if we go there personally, it will boost us nicely also.
Very good. You arrange, we'll do it nicely. And give nice donation for Barsana Hospital also. So, both purpose will be done nicely. Yes, Sri Bhagwat Das ji.
Hare Krishna, Prabhuji.
Hare Krishna. Yes.
Yeah, my question is a little bit related to the Friday's session. Is it okay to ask?
Yes. Yes.
So you have mentioned that in the Goloka Vrindavan there is no Bali Leela.
Bali Leela, acha. Yes.
So how to understand that Krishna gave Putana the position of nurse in spiritual world?
It is simultaneously one and different, Prabhuji. It's not impossible for the Lord to not have Balila. When Yashoda is connected with Krishna in Goloka, her bhav is the same, ki my Lala is small baby only. I'll give an example to you. When I was a small boy, my grandma was about 72-year-old. I was about 8-year-old. And my father was about 55-year-old. Okay. And the way my granny would treat my father, as if he was a small boy, you know, constantly in front of me only, she would scold him, she would wake him up and tell him, this is the time to sleep, get up in the morning, you lazy boy, get up. And I was his boy. So, mother's approach towards her son, although mother is 95 and the son is 75, for mother, he is a boy only. So like that, Krishna may be 16-year-old boy. But the attitude of Mother Yashoda remains same as a small baby. So to that small baby attitude, Putana is serving as Dhatri, as a nurse assistant, in the same mood. What is important is the mood that they maintain in Vatsalirasa. So you'll ask, what is Nanda Maharaj doing? Krishna already grown up. What is Prabhavati doing? He already grown up, Krishna. But for them, he is still a small boy only. You will also grow up, you will understand, you will become an old man. Your daughter will become mother of two children and you will have the same feeling as you have now, who is next to you now. You will remember my words and you will come to know in later on. For parents, however big children become, they are small only. Their love and vatsalya will never change. I have now experienced a little bit. Because I have a grown-up married daughter. But I know how I think. So I can tell you the same thing. Okay. Any other question?
Prabhuji, there is a question on the chat.
Yes. Please read.
How did Ranganaji come to Vrindavan?
Good question. I also had the same question. I am still finding out exactly how. The big history is there. Actually, I read everything in the past, but I have forgotten now. But there is a big leela, how Ranganathji came there. I will study and come next time. Not this yatra, some other time.
And Prabhuji, Srinivas Acharya ki beti ka kya naam tha?
Diti ka?
Beti, Srinivas Acharya's daughter's name.
Thakur Hemalata Thakurani. Hemalata Thakurani. Great Acharya she was. Great teacher, Acharya. Any other question? Huh?
There is no other question.
Okay, so we'll end and we'll meet. Can we meet today at 5:45, 15 minutes earlier? If everybody agrees, we can meet 15 minutes earlier. Because I am a little doubtful whether I'll be able to finish or not. So many stories are there. Okay. We'll offer pranams to Vaishnavas. Vancha kalpataru bhyascha kripa sindhu bhya evacha patitanam pavane bhyo Vaishnave bhyo namo namaha anantakoti Vaishnavrind ki jai. Okay, over to Madan Manjari.
हरे कृष्णा, आज हमारा अगला कार्यक्रम क्विज का है, जो कल श्रीदामा प्रभु और किशोरी माता जी ने क्लास दिया था, कल शाम संध्या को जो श्रीमान विष्णु प्रभु ने क्लास दिया, और आज सुबह की कथा में वे